अरविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत पुरी वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की श्री श्री राधा पात्र सारथी ललिता विशाखा की श्री श्री जगन्नाथ गोदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौनीत आय पंचतत्व की जय श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय समवेत भक्त वृंद की जय नीताय गुरु प्रेमानंदे ऑल ग्रो स्टेशन बल्डी बोटीज ऑल ग्रो स्टेशन बल्डी बोटीज ऑल ग्रो स्टेशन बल्डी बोटीज ऑल गोइस टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग ऑल गोइस टू श्रील प्रभुपाद की जय। आप इसके ऊपर रख सकते हो और आप लोग और आगे आ जाओ पीछे थोड़ा और भगवते वासुदेवाय
ओम नमः 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 भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नक्षत्रायेषु नवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्कर्मी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जननाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं तेन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति शापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशकान्तो राधाकान्तो नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने
नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरिणे।
आप लोगों को जगह हो रहा है नहीं तो माधुर माधुर पूरा उधर आगे और इधर बैग पूरा सेव करके तो आपको वो वाला पॉइंट समझ में आया ऑल पास और ऑल फेल ये आप अगर रिकॉर्ड कर रहे तो आप शेष को तो दे देंगे
और आप कौन
हो रहे हैं बस ठीक है कौन कर रहा है आप कर ठीक है ओके तो फिर जरूरत क्या है तो उस पॉइंट को और एक्सप्लेन कर देता है ना ऑल पास या ऑल फेल ठीक है तो किसी को समझ में आया ये चीज ऑल फेल क्यों बताओ
क्योंकि जो हमारे बैचमेट्स हैं वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो थोड़े कमजोर हैं उनको तो उनको थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि वो और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।
ओके तो जो अच्छे हैं वो जो कमजोर हैं उनको हेल्प करेंगे दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके और कोई इनसाइट
डिवोटी के बीच में कोऑर्डिनेशन
हो. ओके क्या कोऑर्डिनेशन
मतलब टीम वर्क.
टीम वर्क
हमारे सॉफ्टवेयर में ना वो होते हैं जब आप कुछ मान लो कुछ जैसे एम्प्लॉय का अपडेट होता है सॉफ्टवेयर आप लोग तो यूज़ किए होंगे कि है ना फॉर्म आता है मान लो इस एम्प्लॉय का कुछ डेटा मान लो अपडेट करना है तो उसमें डेटाबेस होता है. डेटाबेस में दो टेबल्स होते हैं मान लो टेबल में डेटा स्टोर होते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे कहीं जगह पे आता है कि दो जगह पे अपडेट करना पड़ता है ना कि इस टाइप इसमें भी रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए. जैसे मान लो हम एग्जाम्पल देते हैं जैसे मान लो यहाँ पे आपका बेस में आपका एक डिवोटी का इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो ठीक है तो ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे मान लो ऐसे रखा है कि डिवोटी का नाम उनकी एड्रेस ये सारे चीज और फिर उसकी एकेडमिक डिटेल्स या उसकी हिस्ट्री उनकी है ना क्या पास किया या क्या उनका एजुकेशन है कहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो उनका जो बेसिक डिटेल्स है मान लो एक टेबल में हमने स्टोर रखा है और जो बाकी डिटेल्स दूसरे टेबल में स्टोर करे तो जब मान लो किसी ने फॉर्म फिल करे सबमिट किया तो क्या होता है पहले इसमें जाएगा कि ये एम्प्लॉय का डिटेल्स मतलब डिवोटी का डिटेल्स बेसिक डिटेल्स टेबल में सही हो गया फिर दूसरे टेबल में जाके वो जो बाकी डिटेल्स है वो सही होता है. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि एक्सेप्शन एरर हो जाता है कि इसमें तो सेव हो गया लेकिन उसमें जब जा रहे थे सेव करने जा रहे थे तो वहां पे कुछ कनेक्शन ब्रेक हो गया कुछ हो गया तो उधर नहीं हो पाया तो फिर उसमें ऐसा होता है कि अगर दोबारा आप ट्राई करते हो तो फिर एरर देता है बोलता है यहाँ पे तो ऑलरेडी है ना. तो उस टाइप की चीज को क्या करते हैं हम लोग उसमें वो होता है कि उनको ट्रांजेक्शन में डालते हैं है ना. एक सिस्टम होता है कि आइदर होगा तो दोनों होगा और अगर कहीं भी एक्सेप्शन आया तो दोनों वापस हो जाएगा है ना कोई भी सेव नहीं होएगा बिल्कुल. तो जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग कि मतलब गिविंग यू अंडरस्टैंडिंग कि ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये ट्रांजेक्शनल सिस्टम है कि आइदर होगा तो सब होगा नहीं तो एक भी नहीं होगा ठीक है. अब ये चीज यहाँ पे अप्लाई करने का क्या मतलब है ना. इसे जस्ट एक प्रिंसिपल है कि आप लोग सारे डिवोटी तो इस बार जैसे कुछ डिवोटी मान लो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो उन लोगों के लिए किया कि ये उन लोगों के लिए शर्त है एक तरह से कि देखो हम आप लोगों को वी आर कंसिडरिंग कि आप लोग भी उन डिवोटीज के साथ में आप लोगों को क्लास अटेंड करना चाहिए पर आप अगर इस चीज को रिपीट करोगे तो अगली बार नॉट ओनली आप रह जाओगे आपके साथ साथ जो अच्छे किए होंगे वो भी रह जाएंगे एंड यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट है ना. समझ लो आप उसमें भी क्या कॉन्सेप्ट है क्यों ऐसे रखना है उससे मतलब उससे क्या समझ सकता हूँ क्यों ऐसा करना. जनरली एक डिवोटी का जो होता है कि प्रभु जी आपको ये कष्ट हो जाएगा अगर आप ये नहीं करोगे तो ठीक है कष्ट तो कितना भी सहन कर लेते कर प्रभु जी इसके लिए कृष्ण को कष्ट होगा नहीं फिर नहीं कर सकते या इसके लिए आपको दूसरे डिवोटी का कष्ट होगा नहीं फिर तो मुझे करना पड़ेगा. कभी अगर अपनी जरूरत है जैसे मान लो आपको किसी को बीमार तबीयत खराब लग रहा है थोड़ा जूस है ना सोचते हैं कि डॉक्टर का बस दिखा दे ठीक है ठीक हो जाएगा नहीं दिखा बोले प्रभु जी उसका डॉक्टर के पास जा नहीं रहा है दो दिन से है ना उनका निपु जाना है तो उनका तबियत उनको अच्छा भी नहीं लग रहा है मन नहीं कर रहा डॉक्टर हॉस्पिटल जाने फिर भी वो उस डिवोटी को लेके जाएगा क्योंकि ये अभी दूसरे डिवोटी का बात है कंसर्न. लेकिन वो जब खुद की बात आती है ठीक है दिखा रहे की बात ये आपने एक्सपीरियंस किया सिर्फ ये जस्ट एक क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो कुछ भी है जैसे मान लो प्रसादम है मान लो आप यहाँ आपके बेस में मान लो आप ही आके ले प्रसाद बनाने का इच्छा नहीं हो रहा है कुछ मान लो जो है जो वो ही ले लेंगे चलो प्रसाद लेकिन आपके बेस में एक डिवोटी गेस्ट आया हुआ है तो नहीं नहीं ये नहीं ले चल सकता है उसमें हमें बनाना पड़ेगा चाहे कैसे भी करके हमें अच्छा चीज बनाना पड़ेगा क्योंकि उस डिवोटी का कंसर्न है अभी ठीक है. तो उसी तरह जो है यहाँ पे जब आप हम अगर नहीं पढ़ेंगे या हम अगर चीज को अच्छे से नहीं देंगे तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस हम रह जाएंगे इसमें कोई बात नहीं कर रह जाएंगे दोबारा पढ़ लेंगे है ना. लेकिन नहीं, उससे कॉन्सिक्वेंस ये कि सारे डिवोटी जिन्होंने इतना मेहनत किया भी है, सब भी है, आपकी वजह से वो रह जाएंगे. That is not possible. तो I cannot tolerate it. तो मुझे वो करना पड़ेगा कि मैं दूसरे डिवोटी को, मेरे वजह से दूसरे डिवोटी को कष्ट हो वो मैं कर नहीं सकता. तो उससे हमें पढ़ने का इंस्पिरेशन बढ़ेगा अगर हम डिवोटी है तो. नहीं है तो क्या मंजूर है? मैंने ये बोला कि ये मंजूर है सब डिवोटीज को, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स मतलब सीनियर डिवोटीज है जन एंड वगैरह, उन लोगों का है नहीं, इसमें मार्किंग सिस्टम में नहीं है, दे आर एक्सक्लूडेड. लेकिन जो मार्किंग सिस्टम में है उनका होना चाहिए. क्या आप लोग मंजूर है? मंजूर है, सबका मंजूर है. गौतम प्रभु आर यू रेडी? पार्थवान प्रभु आर यू रेडी? आप नहीं पढ़ेंगे, आप रीडिंग असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी वजह से हो सकता है सारे ड्यूटी को दोबारा एलसीस करना पड़े. ठीक है, और हम बता भी देंगे आपको कि कौन ड्यूटी पीछे पड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जिनकी वजह से कोई और ड्यूटी सफर कर सकते हैं. मंजूर है? उसमें भी बताया जाता है कि जिसे एक चेन है, लोहे का चेन है, कितना मजबूत है वो पता चलता है कौन सा लिंक उसका वीक है, सबसे वीक है. तो वीकेस्ट लिंक जितना स्ट्रांग है एक चेन उतना स्ट्रांग, चाहे उसमें कितना भी स्ट्रांग लिंक हो, लेकिन एक अगर वीक है उसमें तो पूरा चेन वीक है ना. तो एक डिवोटी का जितना लेवल है उसी से सबका आइडेंटिफाई हो रहा है. ठीक है, ओके. तो आपको समझ में आया ये पॉइंट? आत्मानंद प्रभु एग्रीड? ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बजपुर सर तुम बताओ, ये प्रिंसिपल ठीक है नहीं? कौन सोचते हैं कि ठीक है? नहीं, हम चेंज भी कर सकते हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि यही होना ही चाहिए. आप लोग अगर बोल दो कि नहीं ऐसे नहीं है, हम पास हो रहे तो हमें जाना है और हम फेल हो रहे तो हम रहेंगे, कौन सोचते कि मतलब ये होना चाहिए कि जो पास है वही जाना चाहिए, जो नहीं होंगे वो रहना चाहिए? कौन कौन सोचते हैं? आई एम ओपन टू बोथ, वी आर ओपन टू बोथ. नहीं ऑनेस्टली बता सकते, ऑनेस्टली अगर सोच लो यू कैन ऑनेस्टली से कि आई फील लाइक दैट, दैट इज
ऑल्सो. ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल पनिशमेंट है कभी कभी हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम आगे प्रोग्रेस करें.
अच्छा, कौन सा पनिशमेंट है?
मतलब जैसे लेवल में नहीं जा पाए और अगले लेवल में नहीं जा, कुछ टाइम के लिए हमें थोड़ा खराब लगेगा तो नहीं जा पाए, लेकिन जो एक्चुअली हमें एडवांसमेंट है उसमें हम और आगे सोच रहे हैं कि मुझे इस बार अच्छे करना है और दोबारा जो उस चीज में एक्सपर्ट हो जाए.
तो आप क्या सोचते हो कि ऑल फेल होना चाहिए या कुछ पास कुछ फेल होना चाहिए? उनको पास होना चाहिए, जो फेल है उनको फेल होना चाहिए.
मतलब ऐसे होना चाहिए कि उनको कुछ समझना चाहिए, समझ रहे कि नहीं, अगर सेकंड टाइम वही गलती कर रहे तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर वही सेकंड टाइम वही गलती कर रहा हूँ तो मेरे लिए कभी अच्छा नहीं.
ऑनेस्टली बताओ किसको क्या?
हाँ, अगर कोई कमजोर पड़ जाता है तो जैसे टाई होता है ना, एक टेस्ट और होना चाहिए तो उसमें मौका देना चाहिए, इंटायर बैच को रिपीट करने की जगह एक टाई देना चाहिए
उनको, एक दोबारा
एक टेस्ट और देना चाहिए एक दो क्लास के बाद, पूरी क्लास रिपीट करना चाहिए.
अच्छा, तो उसमें भी फेल हो जाए तो सब फेल? ठीक है, तो जनरल को आप बताएंगे क्या करना चाहिए, है ना, डिवोटीज क्या सोचते हैं और उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, जो भी लेंगे पहले से ही लेंगे और उसी पे स्टिक रहना चाहिए, रहेंगे हम. ठीक है, ओके. तो हम अटेंडेंस ले लेते हैं. आत्मानंद भक्त प्रभु इज देयर, सर्व पूज्य प्रभु आई नहीं ना, सुनिधि प्रभु इज देयर, अमृत लीला प्रभु, अमृत लीला प्रभु कहाँ है?
कॉलेज
में, कॉलेज में भक्त कुमार प्रभु इज देयर, हृदय प्रांत प्रभु कहाँ, उनसे मुझे बात करना है और भी, क्योंकि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिला है ना वो फाइनेंशियल वाला, मुझे सारे सी एस क्यू को लक्ष्मी भी देना है, आपको लक्ष्मी वगैरह कितना चाहिए वो है ना,
मैं बताया था
कदय फ्रंट हो गया तो मुझे एक्चुअली ठीक है कोई सभी फ्रंट हुए थे यार, प्रहलाद चंद को भर गए हैं, तुष्ट फ्रंट हुए हैं, आनंद निमाई को इस दया, अवधूत निमाई को कहाँ है कंपनी में ऑफिस गया, कमलनी तय प्रू है ना, लक्ष्मीपति प्रिया प्रू है, गौरव प्रू कहाँ है, उमटन गए हैं, मधु माधु प्रो इस दया, परमानंद राम प्रू कहाँ, ठीक है, रामदेव सेवक प्रवेश दया, हरिचरण प्रवेश दया, अवधूत निताई प्रभु ऑफिस गए, बलिकृष्ण प्रवेश दया, देवाशीष प्रू वृंदावन गए, गदाधरपुर वृंदावन गए, वेदांत प्रू नहीं है, हरिप्रेत प्रू नहीं है, और किसी अलग प्रभु है यहाँ पे ना, केशव गुरु प्रू इज दया, अलग प्रभु इज दया, और गौतम प्रभु, गौतम प्रभु आप इसी में ही हो है ना, और साक्षी चंद्र प्रभु का मैं वो लिख देता हूँ, आप लोगों में से ये रिक्वेस्ट आया हुआ है, काइंडली फिल एनरोलमेंट फॉर्म्स, सबका एनरोलमेंट फॉर्म फिल अप कराना है, तो ऐसे आप लोगों का, आप लोग में से कोई एक को सीआर बनाना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एक या दो डिवोटीज, कौन हो सकता है सीआर, कौन हो सकता है वॉलंटियर्स, कैसे बोल को हो सकते हैं, नहीं वो अपने बारे में बताएंगे जो भी बता रहे हैं, हु कैन बिकम, लक्ष्मीपति प्रभु आप बन सकते हैं, कौन आत्मा भक्त प्रभु कैन यू बिकम, दो लोग बनाएंगे, पहले एक और दूसरा, तो आनंद में कुछ थे ना पहले, तो आप ही रहिए है ना, तो आपके साथ कोई और डिवोटी आत्मा भक्त प्रभु, आपके साथ आत्मा भक्त प्रभु, ठीक है, तो आनंद में प्रभु अगर एब्सेंट रहेंगे तो प्रभु जी, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे कि वो एजुकेशन सी एस यू से कोऑर्डिनेट करके क्लास का सेटअप करेंगे, ठीक है, और रिकॉर्डिंग करेंगे, और रिकॉर्डिंग फिर उनको सबमिट भी करेंगे, ठीक है, और जैसे इस तरह से कुछ काम है, जैसे अभी फॉर्म फिल वो करना है, रजिस्ट्रेशन कराना, तो रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव यही है बेसिकली, अब उन्होंने बोला तो है मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कराना है, लेकिन फॉर्म तो दिया नहीं है ना, आप एजुकेशन सी एस यू से क्लास के बाद प्रभु जी आप फॉर्म तो दीजिए, वो फॉर्म लेके सबसे फिलअप करना, और या अदरवाइज यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल आईडी कलेक्ट करना, तो चाहे अभी अगर नहीं कर सकते तो इसे तो हम सबको पता ही है, सब लोगों को मालूम ही है, और तो वो चीज ऑफलाइन भी हो सकता है चाहे तो, है ना, क्योंकि हम सबको पता पे जानते हैं, हम सबका नंबर ही होगा हमारा पास, ईमेल आईडी भी होगा, तो इस वीक में करके तो मतलब सबमिट, हाँ एक मिनट लगेगा वैसे तो, करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कई डिवोटी जिसे जाना होगा प्रोजेक्ट को तो चले जाएंगे, और जिनका नहीं हो पाएगा उनका बाद मेरा पास भी होगा नंबर, हम देके कर सकते हैं, तो आपको करने की जरूरत नहीं ना, ये लोग करेंगे, हाँ जो सी आर है वही करेंगे, अगर दोनों ही एबसेंट है तो कोई भी वॉलंटियर कर सकते हैं, तो ये एक सर्विस है, तो ये एक बार हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, हमारा कुछ लिस्ट बना देंगे, कभी भी कम्युनिकेट करना है तो उनको कर देंगे, तो ये हो गया, तो सी आर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो किसी दिन हो सकता है आप दोनों ही आप एबसेंट हो, तो आप रुजु को SMS कर दो, रुजु में नहीं आ रहा, रुजु एबसेंट है तो आपको कर देंगे। और अगर मान लो दोनों ही एबसेंट है, उन्होंने पहले से प्लान किया तो उन्होंने आपको मेल मैसेज कर दिए और पता चला आपको भी जाना पड़ गया, तो फिर आप इसमें से किसी भी डिवोटी को बोल देंगे कि मुझे दिस वीक हम में से कोई नहीं है, आप प्लीज कर दीजिए, और ताकि एटलीस्ट ये चीज हो जाए, है ना। तो आप लोग जिस तरह से करेंगे ना, तो फिर गाइड कर पाएंगे बाकी लेवल्स में भी को इंच वो जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना चाहिए, तो दे विल लर्न फ्रॉम यू बेसिकली कि किस तरह से को इंचार्ज को मैनेज करना चाहिए। तो क्लास सेटअप बेसिकली वही करते हैं, एजुकेशन सीएसयू का ही करेंगे, आप लोग सिर्फ हेल्प करेंगे, तो हो सकता है वो सामान आपको ला के दे दे, बस आपको बिछाना है बेसिकली, ठीक है। और अगर सामान नहीं है क्लास के लिए तो उनको बोल सकते हैं क्लास सामान नहीं है, सामान लाओ, सामान खरीदेंगे। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट रीडिंग असाइनमेंट्स एंड अमंग स्टूडेंट्स एंड मस्ट सबमिट रीडिंग असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम। तो इसमें तो मेरा ही है कि मैंने रीडिंग असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं किया, बनाया नहीं, तो मैं जैसे पहले भेजता था, मैं इस बार के लिए आप लोगों को कल परसों भेज दूंगा रीडिंग असाइनमेंट्स, आप लोग प्रिंट आउट निकाल के उसको करके ले आइएगा, अगली बार हम चेक करेंगे, और अगली बार आई विल ट्राई, मतलब पहले से प्रिंट आउट ला कर, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन में ये है, एक प्रॉब्लम ये है कि कर सकते हो इसे, लेकिन उसमें फिर ये आता है कि चेक करना थोड़ा टफ हो जाता है, चेक करना जो है यहाँ पे जैसे होते तो सब लोग चेक कर लेते, तुरंत चेक हो जाता है, तुरंत दे सकते, ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मतलब किसी एक डिवोटी को पूरा करना पड़ता है, तो अगर प्रिंटर रहेगा तो यहाँ पे क्लास नहीं हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो मैं तो प्रॉमिस तो कर रहा हूँ कि अगले सैटरडे संडे हो जाएगा, नहीं तो ठीक है, लेकिन मेरा तरफ से करना करना चाहिए, तो ओके। तो हम सबको इम्प्रूव करना है बेसिकली, तो आज हम लोग पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, कोई समराइज करेंगे आप में से, कौन थे पिछली बार परिचय थे आपने, यस प्रियव्रत महाराज का ना, उसमें मेन पॉइंट क्या था हम लोगों ने डिस्कस किया,
प्रियव्रत महाराज भगवान के भक्त थे, भक्तों की बात परिचय महाराज शौक थे कि भक्त होने के बाद भी उन्होंने
और मेन मेन पॉइंट्स हमने क्या डिस्कस किया, मेन पॉइंट्स
वो काफी कंसर्न थे, उनके पिता ने उनको आज्ञा दिया था कि आप गृहस्थ आश्रम को ज्वाइन करें, लेकिन वो काफी कंसर्न थे अपने भक्ति को लेकर, तो फिर उन्होंने क्वेश्चन भी रेज किया था कि मेरे भक्ति से मत तो नहीं हुए, उसको आकर्ष नहीं हुए, तो फिर ब्रह्मा जी खुद आते उनको आश्रम के लिए थे कि मैं चाहिए,
तो ये इससे हमें ये सीखने को मिलता है, इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ कि हमें परमिशन मिल गया हम है ना गृहस्थ आश्रम में जाने का, सो वी शुड बी काइंड ऑफ है ना हैप्पी, और काइंड ऑफ उसमें उनका कंसर्न रिफ्लेक्ट हो रहा था कि ही वॉज कंसर्न्ड, ठीक है पिता का आज्ञा है मैं जाऊँ अच्छा ही है, लेकिन उसमें जाके मेरा भक्ति तो कम नहीं हो जाता, देट वॉज उनका प्राइमरी कंसर्न, ही वॉज वरीड, वो सब कुछ ठीक है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू मतलब मुझे इंस्ट्रक्शन मिला उस हिसाब से कर रहा हूँ, पर फिर भी क्योंकि उसमें चांसेस ज्यादा है कि मैं भूलने का, वहाँ पे मेरा है ना कहीं सारे सेंस एंजॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होगा, तो क्या वो चीज मेरे भक्ति को इफेक्ट तो नहीं करेगा, ये जो वरी सम जो एटीट्यूड वो है एटीट्यूड वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो किसका होगा जो भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, उसको लगेगा लाइफ में बाकी सब कुछ मैं खो सकता हूँ लेकिन भक्ति को नहीं खो सकता हूँ, वो मेरे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी चीज करने से पहले वो सोचेगा वो चीज तो मेरा खोएगा नहीं। और कई डिवोटीज में भी हमने देखते हैं कि ऐसा है कि जब भी गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं या कोई जॉब चेंज कर रहे थे दे कंसीडर इट, इसको एक फैक्टर में रखते हैं कंसीडरेशन में कि ये चीज भी है अगर इफेक्टेड हो रहा है तो मेरे को वो चीज नहीं करनी। और कई जगह पे होता है कि हम उसको फैक्टर को लेते ही नहीं है कि चलो हम तो इतना हमारे भक्ति होता रहेगा नहीं भी होता रहेगा क्या करेगा कुछ ना कुछ तरीके से तो हो ही जाएगा, लेकिन वो चीज मिल रहा है तो चलो इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते। अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो अफेक्टेड होगा ही होगा, कंसिडर करेंगे दैट मीन्स वी आर गिविंग टॉप प्रायोरिटी टू आवर भक्ति, और फिर उसमें फिर वो जो ब्रह्मा जी का एश्योरेंस आया आशीर्वाद आया वो सब चीज रहेगा। पहला चीज तो कंसर्न है ना, उसके बाद उसमें और क्या पॉइंट था शास्त्र पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और उसकी हो सकता है कभी कभी हमारे नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल दिया था कुछ एग्जांपल जिससे शास्त्र और भगवान पे कितना फेथ हमें होना चाहिए जो कि हम लैक करते हैं हमारा अभी है नहीं है ना। तो वो क्या स्टोरी दिया था क्या ब्राह्मण का और वो जो नीडल का जो है ना वो जो हाथी जो उसमें पास कर रहे थे, तो वो रेशनल विषय समझने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन उससे रेशनली हम नहीं समझ सकते भगवान की। और शास्त्र में जब तक फेथ नहीं होगा हमारे भगवान भक्ति इतना अच्छे से हो नहीं सकता, ठीक है। और क्या था, और उसमें ये भी था कि उन्होंने बता रहे थे कि जो अगर रिनाउंस्ड भी है लेकिन वो भी किसके साथ रहते हैं, कितने कितने सिक्स वाइफ्स के साथ रहते हैं, हर किसी व्यक्ति जो है उनको रहना पड़ता है छह पत्नी के साथ, क्या क्या छह पत्नी माइंड एंड फाइव सेंसेस, तो जब तक उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ रिनाउंस हो जाए तो मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो वो बता रहे कि दोनों में ही गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे कि माइंड और सेंसेस में जब तक कंट्रोल नहीं करें हम अल्टीमेटली हम ये छह स्त्री के साथ तो रहे रहे, तो उनको जब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हम रिनाउंस नहीं हो पाएंगे। तो वो कभी कभी बॉडी पूरा थक जाता है सब कुछ बोल रहे हैं तो फिर भी कामना वासना ज्यादा नहीं है हमारे माइंड में, नॉलेज एक्वायरिंग नॉलेज एक्वायरिंग, ठीक है। तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अग्निध्र का जो है जो अग्निध्र है उनका नौ पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े थे वो जो है नाभि है ना, और उनकी पत्नी थी मेरुदेवी है ना। और वो जो है नाभि महाराज और उनकी पत्नी मेरु देवी, उन्होंने प्रियव्रत के महाराज के पुत्र थे अग्निधर, और अग्निधर के नौ पुत्र थे, तो उनमें से बड़े जो पुत्र थे वो थे नाभि।
तो प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे अग्निधर, अग्निधर के पुत्र जो थे वो थे नाभि, और अभी नाभि के बारे में बात कर रहे हैं, नाभि महाराज का है ना। तो नाभि के जो पुत्र है नाभि मरु देवी, उनके पुत्र है ऋषभ, भगवान ऋषभ। तो अभी नाभि महाराज, नाभि और मरु देवी वो लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं है ना, अपनी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उस इच्छा से कि भगवान के जैसा पुत्र उनको प्राप्त हो। तो उस उद्देश्य से उन्होंने भक्ति यज्ञ कर रहे हैं। तो उसमें आता है टेक्स्ट 2 दूसरा श्लोक में बता रहे हैं कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस, मैं बताया कि जो भी सेक्रीफाइस किया जाता है ना, तो कई विधि है कि किस तरह से भगवान को प्रसन्न किया जाता है, सेक्रीफाइस में क्या क्या करना चाहिए। सो बता रहे देयर आर 7 ट्रांसेंडेंटल मीन्स टू ऑब्टेन द मर्सी ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो 7 चीजों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। By sacrificing valuable things or eatables, है ना, वो sacrifice किया जाता है। By acting in terms of place, proper place में रहके, proper जगह पे। By acting in terms of time, proper जो मोस्ट होता है ना उसमें। By offering hymns, है ना, जो वैदिक hymns offer करके। By going through the priest जिस तरह से बता रहे हैं इस तरह से हमें करना है। And then by offering gifts to the priest, priest को gift भी offer करके, by observing the regulative principles, तो वो सारी चीज observe करके, जैसे fasting करके या जिस तरह से वो regulative principles है उसको follow करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है, sacrifice किया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। However, one cannot always obtain the supreme personality or supreme lord थ्रू दिस पैराफर्नालिया। तो ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से सारे फॉलो करने का बाद जो है भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है हो भी जाए और नहीं। तो नेवरदलेस द लॉर्ड इज अफेक्शनेट टू हिज डिवोटीज, देयरफॉर व्हेन महाराज नाभि हु वाज अ डिवोटी वर्शिप्ड एंड ऑफर्ड प्रेयर्स टू द लॉर्ड विद ग्रेट फेथ and devotion and with a pure uncontaminated mind, superficially performing some yajna in the line of pravargya, the kind supreme personality of Godhead due to his affection for his devotees appeared before King Nabhi in his unconquerable and captivating form with 4 hands. In this way, to fulfill the desire of his devotee, the supreme personality of Godhead manifested himself in his beautiful body before his devotee. तो यहाँ पे यही बता रहे कि भगवान को जो प्रकट होना, भगवान का यानी प्रकट होना, ये कम्प्लीटली भगवान की इच्छा के ऊपर है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमने पूरा अच्छा से फॉलो किया तो भगवान क्यों नहीं प्रकट है ना। और भगवान प्रकट नहीं हुए इसका मतलब फिर ये सिस्टम बेकार है या भगवान है ही नहीं। तो ये जो है ये कभी कभी हमारा कंटेमिनेटेड माइंड में आता है कि हमने इतना कुछ किया और उसके तुरंत रिजल्ट जो हमें अभी मिलना चाहिए ना? और अगर नहीं है तो जनरली मेटेरियलिस्टिक लोगों का ये उनके आर्गुमेंट्स होते हैं है ना, क्यों बोलते हैं कि कोई गलत हो रहा है तो क्यों भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं या भगवान क्यों नहीं उसमें सजा देते उनको है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान हमारा अंडर में नहीं है, कि हमें लग रहा है कि ये राइट टाइम में भगवान को प्रकट होना चाहिए एंड भगवान विल नॉट कंसिडर आवर थॉट टू बी है ना द वे टू डू है ना, क्योंकि हम सब कंटेमिनेटेड है, वी हैव नो नॉलेज टू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए। हम अपना ही नहीं समझ पाते हमें कौन सा काम करना चाहिए, और भगवान को कब प्रकट होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए हाउ कैन वी डिसाइड है ना। पर जनरली मेटेरियलिस्टिक लोग ये बताते हैं और भगवान को प्रकट होना चाहिए, वो चैलेंज करते हैं कि अगर है तो भगवान प्रकट होना चाहिए। तो एक प्रभु जी का लेक्चर था टेम्पल में, शायद गोरकृष्ण प्रभु का था, तो वो कह रहे थे कि जब चैलेंज भी करते हैं तो भी भगवान प्रकट नहीं होते। कोई मैटेरियलिस्टिक लोग चैलेंज करते हैं कि अगर भगवान है तो प्रकट हो, तो भगवान प्रकट नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? भगवान की पूर्ण शक्ति है, भगवान प्रकट हो सकते हैं, क्यों नहीं होते? तो कह रहे हैं कि इट्स नॉट सो चीप कि आप कोई भी चैलेंज कर दो भगवान प्रकट, तो भगवान को प्रकट करना इज नॉट सो चीप। अगर किसी का चैलेंज भी भगवान प्रकट हो जाए तो वो कह रहे थे तो फिर भक्तों का भक्ति का वैल्यू क्या रह जाएगा? भक्त का जो अनकंडीशनल भक्ति है केवल उसी के माध्यम से ही भगवान को समझा जा सकता है, भगवान की दर्शन हो सकता है। तो अगर सिंपल किसी का चैलेंज से भगवान प्रकट हो गए तो भक्तों का जो डेडिकेटेड डिवोशन है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो उसका जो है भगवान को दर्शन करने का जो शक्ति है भगवान ने रिजर्व करके केवल भक्तों के लिए रखा है, जो अनकंडीशनल भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और उसी के माध्यम से भगवान के दर्शन। अगर भगवान को दर्शन करने का इच्छा है तो इट्स नॉट सो चीप, ये चैलेंज करके नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो भगवान पूर्ण स्वराट है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो डिवोटी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि भगवान इज पूर्ण स्वतंत्र है ना। भगवान शुड नॉट बी ऑब्लिगेटेड, should not be obliged to do something. So you will get the result. What is the result? That is true, it is scientific. As result means devotion to the Lord. तो अगर भगवान प्रकट नहीं भी हो, अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आपका अनर्थ दूर होंगे, भगवान के प्रति प्रेम होंगे। ठीक है, तो प्रेम होंगे तो आपके वो फीलिंग कभी नहीं आएगा कि भगवान प्रकट होना ही चाहिए, नहीं होंगे तो आप भगवान को नहीं मान लेते, तो ये आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट भी क्या है वो भी समझना जरूरी है। इट्स नॉट मेटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है कि भगवान प्रकट होना वो हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि वो प्रकट नहीं हुआ तो इसलिए जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो रिजल्ट नहीं है। आप समझ रहे? तो ये डिवोटीज में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये सब चीज मैटर करेगा, हमारा भक्ति कितना हम स्ट्रांगली हम कमिटेड रह सकेंगे, तो कृष्ण के ऊपर हमारा कितना फेथ रहेगा उसमें, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट, तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और डिवोटी है, वो अच्छा लगता है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और इसलिए भी डिवोटी कभी डिमांड नहीं करते भगवान से, वो बोलते हैं कि भगवान को जो इच्छा है वो हमें करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है, वी आर डिवोटी, वी हैव टू सर्व, है ना, व्हाट कृष्ण वांट्स। ठीक है, एंड तो उसके आगे फिर तो उसके बाद भगवान वहां पे प्रकट होते हैं, है ना। यह भी बताया कि स्पेशली किस से भगवान, एंड भगवान इज काइंड, कृष्ण इज सो काइंड। अब कभी कभी हमें हो सकता है समझ में नहीं आ रहा भगवान इज सो काइंड तो हम इतना बार फेल क्यों हो रहे, है ना, हमें इतना जॉब क्यों नहीं मिल रहा, या हम इतना वो कर रहे तो भगवान काइंड कैसे है? कभी कभी हमारा कंटेम्परेरी माइंड इज जस्ट बिकॉज हम कृष्ण की काइंडनेस को समझ नहीं, पर जस्ट बिकॉज ये सब इसलिए हो रही है कि हमारा एंजॉयिंग टेंडेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है कि जो हम चाह रहे हैं वो चीज नहीं मिल रही है, तो वी कंक्लूड। तो भगवान की काइंडनेस इज टू टेक अस बैक टू कृष्ण, टू फ्री अस फ्रॉम सफरिंग लाइफ आफ्टर लाइफ। तो वो काइंडनेस को समझने के लिए भी, भगवान की काइंडनेस को समझने के लिए भी वी नीड टू बी एडवांस्ड, कृष्ण इज सो काइंड। इसीलिए जो कृष्ण है नाम रूप गुण लीला है ना, तो कृष्ण के गुण को समझना इज नॉट इजी है ना। आप देखेंगे प्रभुपाद की लेक्चर में प्रभुपाद कितना बताते कृष्ण इज सो काइंड, कृष्ण इज सो काइंड, पर हाउ मच वी फील दैट कृष्ण इज सो काइंड टू मी, हाउ मेनी टाइम्स वी फील कृष्ण इज रियली सो काइंड, कृष्ण इज सो मर्सीफुली ब्रॉट अस from an abominable condition of life to this place. Really feeling that Krishna is really so much kind to me. And so I must dedicate my life to Krishna. And so, aap dekhenge jab devotees, jab hai na, the great devotees, they always glorify like that. Krishna is so kind, Dinanath, Dinadayal. So, Krishna is so kind. We have to feel, we have to understand. But हम तब तक नहीं कर पाते हैं जब तक हमारा जो है माइंड में वो एंजॉइंग टेंडेंसी रहेगा, we are not able to appreciate. Materially we calculate कि अगर वो कर दिया then he is kind. अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ कर देता है हमारे, कुछ दे देता है, कुछ गिफ्ट दे देता है, we consider sometimes he is better than Krishna. He is better, he is helping. Materialistic लोग यही कहते हैं कि they are better, they are serving, they are helping. So to understand Krishna's kindness, Krishna's mercy, it requires advancement. है ना? तो और जब हमारा ये रहेगा तब हमारा कभी माइंड में ये नहीं आएगा कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को छोड़ के कहीं चले जाए. We will always feel grateful. ठीक है? तो उसके आगे भगवान वहाँ पे प्रकट हुए और वहाँ पे कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मेरा जैसे पुत्र हो, लेकिन मेरा जैसे कोई हो नहीं सकता, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा. तो फिर भगवान ऋषभ देव के नाम से प्रकट हुए और भगवान की जो सुंदरता, भगवान की जो गुण है वो सब देखते हुए नाभि महाराज ने उनका नाम रखा ऋषभ. ऋषभ का मतलब है बेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऋषभ है तो ऋषभ देव ना, तो ऋषभ का मतलब बेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो उसके बाद सारी जनता चाहने लगे कि ऋषभ देव जो है वो राजा बने. तो नाभि महाराज तब तक राजा थे, तो वो सब चाह रहे थे कि ऋषभ देव राजा बने. तो नाभि महाराज जो है क्या किया, फिर ऋषभ देव को जो है अपनी राज्य भार सौंपा है ना, और फिर वो और मेरु देवी वो चले गए वहाँ पे बद्रिकाश्रम. तो देखिए है ना, ये सारे होते थे कि राजा है, वो भक्त थे, सब कुछ पूरा अच्छा एनवायरमेंट है, फिर भी वो बन में गया. और वहाँ पे लिखा हुआ है था दे एंगेज्ड इन ऑस्ट्रिटी एंड पेनेंस जुबिलेंटली, है ना, जुबिलेंटली मतलब जुबिलेंटली मतलब हैप्पीली जॉयफुली. तो मैं रहता था, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया पेरेंट्स हैप्पीली कर रहे थे, है ना, तो ये मतलब ये हैप्पीनेस की बात है, मतलब इसका मतलब है ना कि जो ऑस्ट्रेलिया सुबह 3:30 बजे उठना, नहाना, इसलिए ब्रह्मचर्य करते हैं, देयरफॉर दे आर जुबिलेंट, है ना. इनफैक्ट नहीं करने से है, क्या होता है, हम मोरोज होते हैं कि हम नहीं कर पाते. आप देखेंगे जिस दिन लेट उठेंगे, जिस दिन चैंटिंग ठीक से नहीं होगा, विल बी मोरोज. लेकिन अगर परफेक्टली उठ रहे हैं सुबह, परफेक्टली साधना कर रहे हैं, दे विल बी जुबिलेंट, नहीं, बिकॉज यू विल बी कॉन्क्वायरिंग ओवर आवर वीकनेस. तो एक्चुअली जो डिवोटीज करते हैं परफेक्टली कर पाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से पेनेंस से डरते नहीं है डिवोटीज, है ना, दे डूइंग जुबिलेंटली. और फिर उसके बाद दे वेंट बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो वो जो है जीवन मुक्त हुए और भगवान के धाम में पहुंचे, चले गए. तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है, कैसे गौरव को नावी देवी और मेरु देवी, हाँ, तो वो लोग वहाँ पे गए और फिर वो लोग भगवान की धाम में चले गए, जीवन मुक्त हो गए। तो प्रभुपाद पार्पेट में जीवन मुक्त का एक्सप्लेन करते हैं। तो जीवन मुक्त मतलब जो इस शरीर में रहते हुए वो क्या हो गए, मुक्त हो गए, they're liberated even though they are still in this body। तो उसमें बताते हैं कि उसमें वर्णन आता है कि जीवन मुक्त का सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा, मतलब जो जीवन मुक्त है उनका कुछ सिम्टम्स भी प्रकट होते हैं। तो सिम्टम्स में बताते हैं कि ये कि अपहत पाप, नो सिंफुल एक्टिविटी, वो कभी सिंफुल एक्टिविटी करते नहीं। तो उसमें लिखते हैं कि प्रभुपाद की जैसे है ना ये फोर टाइप की जो सिंफुल एक्टिविटी, लेकिन हमारा क्या है, सिंफुल एक्टिविटी करते ही करते रहते हैं, अगर जब तक केयरफुल नहीं रहते तो हमारा करते ही रहते हैं। लेकिन जो लिबरेटेड है, जो जीवन मुक्त हो चुका है, वो गलती से भी सपने में भी वो क्या नहीं कर रहे हैं, कभी कोई भी सिंफुल एक्टिविटी वो नहीं करते। सिंफुल एक्टिविटी हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, हम डिजायर की वजह से, हमारे है ना एंजॉइंग टेंडेंसी की वजह से या अज्ञानता की वजह से, ये दो चीज की वजह से करते। तो जब डिजायर नहीं रहेगा है ना अपनी से, तो सिंफुल एक्टिविटी होगा ही, और अज्ञानता भी नहीं है, है ना, नो देट वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण। सो देट वे जो है इज नो सिंफुल एक्टिविटी। फिर बीजरा, बीजरा मीन्स नो ओल्ड एज सफरिंग, वो ओल्ड एज में कभी सफर नहीं करते, मतलब ओल्ड एज का सफरिंग उनको टच नहीं करता। तो हम देख सकते जैसे तो भाई इतना ओल्ड एज में है ऐसे ट्रेवल कर रहे थे, ऐसे उनके लाइफ स्टाइल शेड्यूल था, वो कभी टच नहीं किया वो पेन कभी। और जैसे प्रभुपाद की बात, जैसे बचपन में उनको खिलाया भी जा रहा था, वो जो उनके बीमारी का समय जो कि चिकन सूप, उन्होंने टच ही नहीं किया, लिया ही नहीं, तो कोई भी सिंफुल एक्टिविटी टच ही नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, है ना। तो वो टच नहीं करता है, उसकी पेन जो है, पेन उनको अफेक्ट नहीं करता है, दे आर अबव दिस पेन एंड प्लेजर। तो पेन होते हुए भी आप देखेंगे कि उनकी एक्टिविटीज जो है इट्स नॉट अफेक्टेड, वो कृष्णा कॉन्शियस की जो सर्विस है वो स्टॉप नहीं करते, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द पेन,
पेन होते ही महसूस नहीं होता है,
दे आर अबव दिस, अबव पेन एंड प्लेजर। सो दैट इज द सिम्टम, अदरवाइज कोई भी पेन में शॉक हो जाएगा और बोलेगा मेरा पहले पेन खत्म होएगा, मैं पहले स्वस्थ होऊंगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर कुछ करूंगा, पहले आई हैव टू डू दैट, दे डू नॉट स्टॉप ना एनी एक्टिविटी। ठीक है,
ऐसे कंडीशन में मतलब मेंटेन कैसे रखते हैं,
ये तो है जीवन मुक्त, जो हम लिबरेट होंगे तभी हमें समझ में अबव द बॉडीली कंसम्पशन तभी हो सकता है, इस बॉडी में क्या हो रहा है इट डजंट मैटर मच। बॉडी फिर आगे विमृत्यु मतलब नो मोर मेटेरियल बॉडी, इसके बाद उनका कभी बॉडी मेटेरियल नहीं होगा जन। फिर विशोका मीन्स कैलस ऑफ मेटेरियल डिस्ट्रेस, आप वही पॉइंट आ रहा है कि उनका मेटेरियल डिस्ट्रेस होगा भी, दे विल नॉट टेक इट सीरियसली, दे विल बी कैलस, मतलब कैलस, कैलस मतलब CALLOUS, कैलस मतलब जो है आप उस चीज को इनडिफरेंट काइंड ऑफ आ रहा है हो रहा है ना, इतना केयर नहीं करते, केयरलेस, कैलस मतलब केयरलेस काइंड ऑफ समझ। तो उस पेन इज पेन जो आ रहा है, पेन या डिस्ट्रेस इट डजंट मैटर मच। ठीक है, बी जिघत्स नो लॉन्गर डिजायर फॉर मेटेरियल हैप्पीनेस, मेटेरियल हैप्पीनेस के आफ्टर में नहीं रहते। फिर अब पीपता मीन्स नो डिजायर अदर देन एंगेजिंग इन सर्विस ऑफ कृष्ण, उनका एक ही डिजायर रहता है सर्विस ऑफ कृष्ण। देन सत्य काम, ऑल डिजायर्स आर डायरेक्टेड टू सुप्रीम लॉर्ड, जो भी सोचते हैं उनके डिजायर है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि वो डिजायर तो होता ही है लेकिन वो सारे डिजायर भगवान को के साथ लिंक्ड होता है। then satya sankalpa, but whatever he desires is fulfilled by the Lord. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे तो वो अपने लिए कुछ डिजायर नहीं करता है, लेकिन जो भी डिजायर करता है वो भगवान फुलफिल कराते हैं, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जो भी डिजायर किया वो सारे कृष्ण फुलफिल करा, है ना। तो उनकी डिजायर का इतना पावर रहता है कि उनकी डिजायर जो है कृष्ण बहुत पर्सनली लेते हैं कि यार ये मेरा डिवोटी ने डिजायर क्या वो पूरा होना चाहिए, ये उनका। तो इस तरह से तो आप भी जब जीवन मुक्त हो जाएंगे तो आपके पास इतना पावर होगा, आप कुछ भी डिजायर करेंगे कि यहाँ पे इतने डिवोटीज होनी चाहिए, यहाँ पे इसमें इतना होना चाहिए, ऐसे इतना होना चाहिए, सब हो जाएगा। आपकी इच्छा मात्र से क्या है कह सकते हो, कृष्ण अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज हम अभी कितना भी करें नहीं होगा, है ना। हाँ अब यही है, तो आपने आपको हमें मुक्त करना है बेसिकली। अब टीचिंग का जो है ये सीक्रेट है आपसे, जैसे आप बता दो ना कि गुरुजी कैसे उनको बुला के लाए यहाँ पे, है ना, डिवोटीज को कैसे लाए, तो इसमें इसका आंसर है। तो आपने डिजायर करो कि ये लोग को आना चाहिए जो लेवल टू में है, उनको आना चाहिए यहाँ पे, है ना, उनको यहाँ पे आना चाहिए और आपकी डिजायर देट विल रिक्वायर क्या आपका प्यूरिटी, है ना, कि कृष्ण को लगना चाहिए कि आपके जो डिजायर है, है ना, वो प्योर डिजायर, देन कृष्ण विल मेक इट। तो उस लेवल पे आने के लिए हमें प्योरिटी चाहिए, प्योरिटी चाहिए वैसे, प्योर डिजायर भी वही कृष्ण के लिए है, कृष्ण की खुशी के लिए, जो भी डिजायर होगा कृष्ण की खुशी के लिए होगी। हाँ मतलब कई भी है, लेकिन हमारा अभी उस कॉन्शियसनेस में ही नहीं है, तो हो सकता है हमारा डिजायर प्योर भी है अभी, लेकिन हमारा हर मोमेंट का कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है, हम उस लेवल पे नहीं है, तो इसलिए ठीक है। तो ये तो सीक्रेट है ही, अर्थपन रू आपका क्या डिजायर, इसलिए डिजायर भी जरूरी है, क्या डिजायर है, ड्रीम क्या है आपकी, गोविंदपुरी बेस में कैसा होना चाहिए, आप ड्रीम करो कैसा होना चाहिए एंड इट विल बी फुलफिल्ड, है ना, ठीक है। तो ड्रीम है कि नहीं आपके पास, है कि कैसे होना चाहिए, बताओ जरा कैसा होना चाहिए। अच्छा उनका भी बेस की तरह गोविंदपुरी बेस होना चाहिए, ये बढ़िया है। ओके तो
नहीं जाना
पड़ेगा, ये तो गेट टुगेदर वगैरह यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा और कलर दीजिएगा कि कितना होना चाहिए उनका जेट से, मतलब कितना उनका भी चीज को मालूम है कि नहीं कि वहाँ पे क्या क्या चीज है, तभी तो हम वैसे उनके जैसा कितने डिवोटीज हैं, कितना डिवोटी होना चाहिए, कैसे है ना, कहाँ पे होना चाहिए, गोविंदपुरी की कौन सा इलाका में एरिया में होना चाहिए, कैसे होगा, तो थोड़ा क्लियरली बताइए, है ना, ड्रॉ कीजिएगा कि दीज आर माई गोल, देखिएगा होगा ठीक है, क्योंकि आप तो प्योर है ना उससे ऑलरेडी कर ही रहे, तो अगर नहीं होना है तो आप सोचिए कि मुझे जीवन मुक्त होना पड़ेगा, थोड़ा और प्योर होना पड़ेगा, थोड़ा और साधना को अच्छा करना पड़ेगा, देन यू विल से वी सी इट विल हैपन। देखो उसमें भी है कि डिजायर भी डिजायर में प्रभुपाद चाहते हैं कि सब लोग उद्धार हो जाए, है ना, लेकिन उसमें भी ये है कि सब लोग भक्ति करके ही उद्धार हो जाए, सबको प्रभुपाद कहिए कि सबको भक्ति का फैसिलिटी मिले, ऐसे नहीं प्रभुपाद हमें ना कहते कि कोई भी प्रोफेसर जो है वो अपना इस तरह से बताएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए फिर वो पास हो सकते, तो स्पिरिचुअल मास्टर भी यही कहता है कि आप ऐसे करिए तो आप उद्धार हो सकते, तो उद्धार होने की फैसिलिटी सबको मिलना चाहिए, और फिर प्रभुपाद ये भी कहते हैं ये दे डू नॉट कम If they don't do not do that, what can be done? What can be done? नहीं किया जा सकता. तो प्रभुपाद की जो इच्छा है, जो डिजायर था, और फिर डिजायर ये भी होता है कि जो डिवोटी डिसाइपल बहुत सिंसियरली करते थे, प्रभुपाद का स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कि दिस डिवोटी मस्ट गो बैक टू गॉड, तो वो डिजायर कुछ ना फुलफिल करते हैं. तो दोनों डिजायर में भी थोड़ा अंतर है कि वन इज सर्विंग वेरी सिंसियरली, तो उनके प्रति जो डिजायर होगा उनके लिए, और एक जो नहीं आ रहा है उनके प्रति डिजायर, दोनों में फर्क होगा, है ना? तो उस हिसाब से ठीक है. तो प्रभुपाद का आप देख सकते हो हर एक डिजायर की, यहाँ पे जो भी मैं उन्होंने सोचा कि यहाँ पे टेम्पल होना चाहिए, कितना भी डिफिकल्टी हो सारे पूर्ण हुआ है, सारे फुलफिल हुआ. सो करुणा होती है बेसिकली, इट्स नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, शायद कभी समझे, शायद कभी समझे, कृष्ण की कृपा हो कभी आए, इस तरह से करुणा होती है. लेकिन तो वो भी फिर धीरे धीरे आपके एडवांसमेंट के साथ साथ आपका विजन चेंज होती है, आपका थॉट चेंज होता है, है ना? थॉट चेंज, तो वो एक डिफरेंट ही टॉपिक है. ठीक है, तो ये है जीवन मुक्त का वो, तो आप समझ रहे हो. तो हम सबको क्या होना चाहिए, है ना, थोड़ा प्यूरिफाई होना चाहिए. जितना हम प्यूरिफाई होंगे इतना हमारा जो डिजायर है, जो प्रोबर्थी मिशन के लिए या हमारा जो भी, हम सब कई कुछ कुछ डिजायर तो यही बेस में ये होना चाहिए, इस तरह से आइडियली है मैनेजमेंट होना चाहिए, आइडियली वो होना चाहिए. ये हम देखते नहीं होते तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों. तो अगर हम प्यूरिफाइड होंगे तभी शक्ति होगा, तभी चीज होगा. ठीक है, उसके बाद जब उनके बाद उनके बारे में नाभि महाराज के ग्लोरिफिकेशन के बारे में ये बताते हैं कि उस समय जो सेजेस थे वो दो वर्सेस लिखे थे कि उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए. तो उसमें दो वर्सेस में ये था कि हु कैन अटेन द परफेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ नाभि महाराज एज सुप्रीम पर्सनैलिटी एग्रीड टू कम एज हिज सन. तो बता दें कि कौन ऐसे नाभि महाराज की तरह परफेक्शन पा सकता है. फिर दूसरा था कि हु इज बेटर वर्शिपर ऑफ ब्राह्मण, क्योंकि नाभि महाराज वॉज, है ना, वर्शिपिंग ब्राह्मण, जो ब्राह्मण उनको यज्ञ करा रहे थे, तो उसमें जो है वो ब्राह्मण को इतना अच्छे से सर्विस कर रहे थे कि ब्राह्मणों ने बेसिकली भगवान को इनवाइट किया था, और भगवान जब आए थे तो उनसे रिक्वेस्ट किया था कि नाभि महाराज का पुत्र हो और आपकी तरह, तो वो ब्राह्मण जो है नाभि महाराज से इतना प्रसन्न थे कि उस सब ने भगवान को एक तरह से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज प्रकट हो जाइए, और सबकी उससे जो है ना भगवान प्रकट हुए. तो यह भी बता रहे कि ब्राह्मणों को उनसे ज्यादा नाभि महाराज की तरह से ज्यादा और नाभि महाराज की तरह ब्राह्मणों का सेवा कौन कर सकता है. ठीक है, तो आगे जो है आगे आता है कि जब नाभि महाराज फिर राज्य का भार लिया, तो नाभि महाराज की सॉरी नाभि महाराज ने ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव, तो उनसे जो है उनकी सारे ग्लोरीज फैल रहे थे, और उससे फिर जो है क्योंकि जब भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं तो है कभी कभी जो है भगवान जैसे मनुष्य शरीर में आते हैं तो कभी देवी देवता भी समझ नहीं पाते योग माया के प्रभाव से, है ना, और वो सोचने लगते हैं कि सारे साधारण कोई होगा, है ना. तो फिर जो है उनकी जब ग्लोरीज देखते हैं तो जो इंद्र जो है वो इंद्र उनसे फिर एनवियस होते हैं. तो इंद्र फिर एनवियस हो गया. इनफैक्ट इंद्र नहीं है, हम सब एनवियस है भगवान से हो जाते हैं, है ना. और किसी एक लेक्चर में कोई एक महाराज बताया था कि अगर हमारा बस चले तो हम तो भगवान को ऑल्टर से उतार के हम बैठना चाहते हैं. ऐसे है हमारा एनवियसनेस, हमारा हृदय के अंदर इतना है. तो इंद्र जो है भगवान की उससे शक्ति उसके प्रभाव से एनवी हो गए, एनवियस हो गए, और उन्होंने क्या किया, उनके पास जो शक्ति था, है ना, है ना, तो वो क्या होता है जो उनका क्या शक्ति है, जो बारिश का बरसात की उनका पावर है, तो उन्हें बरसात बंद कर दी, बरसात नहीं होगा.
ठीक है। तो जब बरसात बंद कर दिया तो भगवान ने अपनी शक्ति से जो अपने जो राज्य था वहां पे उन्होंने बरसात करा, है ना। तो अपनी शक्ति से, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान वो है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जिन्होंने सारे चीज के लिए ऑफ कोर्स है ना अपॉइंट कर रखा है, लेकिन वही भगवान है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। तो कृष्ण यहाँ पे ऋषभ देव जो है वो इंद्र के ऊपर बरसात के लिए डिपेंडेंट नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से वहां पे बरसात कराया। और जस्ट इसके ऑपोजिट हम देखते हैं कृष्ण लीला में कि वहाँ यहाँ पे इंद्र ने वर्षा रोक ली था और ऋषभ देव ने वर्षा कराया और वहाँ पे उन्हें वर्षा देने लगे, इतना बरसात होगा कि कहीं जगह नहीं होगा रहने के लिए, तो भगवान ने गोवर्धन उठा लिया।
वही इंद्र अभी भी
है, पता नहीं हो सकता है वही हो। तो वहां पे भगवान की ये लीला है कि भगवान ने उस जगह को ले लिया कि इस जगह पे इंद्र का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, बाकी जगह तो हो सकता है लेकिन इस गोवर्धन की पर्वत के नीचे यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं। तो उसी तरह वहां पे इंद्र का बाकी जगह पे है लेकिन जो भगवान की जो राज्य है वहां पे कोई प्रभाव
नहीं। हर बार भूल जाते हैं
भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं है, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं।
जैसे तो आप बता रहे हैं कि योग माया की वजह से भूल जाते हैं, तो योग माया महामाया
मतलब भगवान तो यहाँ पे आते हैं योग माया से, भगवान अपने जो मनुष्य शरीर धारण करते हैं मनुष्य लीलाएं करते हैं तो उसी से। हाँ ऑफकोर्स आपका पॉइंट वो है कि आप महामाया बोल सकते हो, योग माया बोल सकते हो, अगर डिवोटी हैं तो हो सकता है वहाँ पे भगवान की भी इच्छा हो कि वो ऐसे भूल जाए, है ना, तो उस केस में योग माया हो जाएंगे, है ना।
योग माया तो फिर तो समझ में आता है कि डिवोटी भूल,
तो अगर सकाम डिवोटी हैं तो भूल भी सकते हैं, सकाम डिवोटी से भूल भी सकते हैं, है ना। कि भगवान को जब प्योर डिवोटी वही सिर्फ नहीं भूल पाते, भूलते तो पहचान जाते हैं भगवान, सकाम डिवोटी भूल भी सकते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर जो है भगवान ऋषभ देव का 100 पुत्र थे, ठीक है। और फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया उनको और वो इंस्ट्रक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवान ऋषभ देव अपनी को दे रहे थे, और भगवान ऋषभ देव जो है यहाँ पे बता रहे थे कि वो जो है एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि वो सब कुछ जानते थे, सारे शास्त्र का नॉलेज था उनके पास, पर फिर भी वो क्षत्रिय थे मतलब राजा थे तो इसलिए ब्राह्मणों का इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलते थे। तो वो स्वयं भगवान थे, वो सब कुछ जानते थे लेकिन फिर भी ब्राह्मणों से इंस्ट्रक्शन लेते थे कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और फिर उस हिसाब से चलते थे। तो इंस्ट्रक्शन को लेके इंस्ट्रक्शन को पालन करना जो है ये वो सिखा रहे थे कि मतलब अपनी पोजीशन के अनुसार चाहे हम कुछ भी नॉलेज हुआ क्यों ना हो तो भी, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि बेस में कोई अच्छा डिवोटी आते हैं और वो एकदम बहुत हम्बल पोजीशन होता है, जिसमें मान लो अखिलानंद प्रभु थे तो बहुत उनका कोई खास कोई रोल नहीं था लेकिन वो जो है इतना सिंसियर थे कि कोई भी कुछ इंस्ट्रक्शन देता था कि प्रभु जी ऐसे करना है वो पालन करते थे कि हमारे बीच जज बता रहे हैं ये चीज तो ये करना चाहिए, तो वो जानते हैं सब कुछ जानते हैं, वो उनसे अच्छा भी जानते हैं लेकिन फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये जो है ये एडवांस मतलब अच्छी पॉइंट है और ये चीज को वो बता रहे हैं दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके आगे कुछ श्लोक है, तो ये जो है 5th chapter में है जो भगवान ऋषभ देव ने वो दिया है टीचिंग्स दिया इंस्ट्रक्शंस अपने 100 पुत्र को, और उसके ऊपर इंद्रनाथ गोपाल कृष्ण महाराज का एक बुक भी है, है ना, और है ना, हाँ पर्पस ऑफ लाइफ, तो उसमें हर एक श्लोक के ऊपर वो तात्पर्य महाराज का वो
तो उसमें हम कुछ श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है, रिसाइट करते हैं हम कुछ। नायं देहो देहो वाजं निलोके कष्टं कामान् अर्हति विद्भुजं ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्तम् शुद्धयस्माद् ब्रह्मसुखं तु अनन्तम् लॉर्ड ऋषभदेव टोल्ड हिज सन्स माय डियर बॉयज ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज हू हैव एक्सेप्टेड मटेरियल बॉडीज इन दिस वर्ल्ड वन हू हैज बीन अवॉर्डेड This human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hawks that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नायम देहो देहो भाजम निलोके, कि ये जो देहो मिला हमें, ये जो है देहो को तुष्ट करने के लिए नहीं है, इस मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, जो कि पशु को भी अवेलेबल है ना। तो ये शरीर किसके लिए है फिर, ह्यूमन लाइफ ये है ना। तो ये तपस्या तैयार होता है, तपस्या जो हम लोग करते हैं, तो मतलब आप सब करते हैं, तो तपस्या क्यों करना है? तो तपस्या आप सब करते हैं, हम लोग सब करते हैं, लेकिन कोई कोई सोच सकता है, कोई मैटेरियलिस्टिक लोग जनरली सोचते हैं यार डिवोटीज है ना, डिवोटी होना मतलब बहुत कष्ट है, बहुत तपस्या है। पर यहाँ पे बता रहे हैं कि तपस्या के लिए ये ह्यूमन लाइफ क्यों, इस तपस्या की रिजल्ट क्या है, पहले तो इसका रिजल्ट। हम कोई भी चीज तभी कर पाते हैं, उसका कष्ट तभी ले पाते हैं, जो उसका रिजल्ट हमें पता हो, उसकी पर्पस पता हो और उसकी वैल्यू पता हो, है ना। तो उसके लिए कितना भी कष्ट हम कर सकते हैं, जैसे आज कोई अगर जैसे प्रभु जी अभी है ना वो कोचिंग कर रहे हैं है ना गेट के लिए, तो वो जाएंगे है ना सुबह मतलब 3 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे तक करते हैं और फिर वहाँ आते हैं, कष्ट है। जो आप नॉर्थ कैंपस में जाके देखोगे डिवोटीज जो है स्टूडेंट्स जो है वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं, अपनी रूम को छोड़ के लाइब्रेरी में जाते हैं, सुबह जाके शाम को आते हैं, खाना उना थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है खा लेते हैं, और कितना पढ़ते हैं वो बता रहे थे, 6 घंटा भी नहीं सो पाते हैं है ना। और कई डिवोटीज है जो नहीं सोते हैं, बहुत कम कई स्टूडेंट्स हैं, वो इतना पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? कोई नहीं, ऐसे तो सादा ऐसे बेकार में नहीं करेंगे, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू पता है कि अगर ये मैं करूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरे लाइफ में जो परेशानी है, जो बेसिक चीज के लिए जो परेशानी होती है वो नहीं होगा, सफिशियंट लक्ष्मी आएगा, सब ठीक ठाक रहेगा। तो वो मेहनत जो है वो तभी करते हैं क्योंकि वो देखते हैं या है ना कि जो बाकी लोग जो नहीं किया है उनका क्या स्थिति है ना, उनको जॉब के लिए इतना परेशानी कर होना उठाना पड़ता है और है ना इतना हालत है, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा स्थिति नहीं चाहिए लाइफ का कि मेरे को जॉब के लिए इधर उधर ढूंढना पड़े, आज है जॉब कल नहीं है, है ना, और मेरे को है ना इस तरह से पैसा का परेशानी होना पड़े, ऐसा कि मेरे को ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लाइफ चाहिए कि मैं अच्छा से किसी जगह पे जो है डिसेंट जॉब करूं और प्रेस्टीजियस जॉब करूं और मेरे को पैसा का कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए लाइफ में, और जो बेस्ट ऑफ द थिंग्स ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल वो मेरे को पा सकूं, और ये तभी संभव होगा जब मेरे का अच्छा मैं ये इसको पास करूंगा। तो ये क्लियर है उनको कि ये मुझे चाहिए और इसकी वैल्यू इतना है, तो अगर मैं दो साल या एक साल में थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ, ये तपस्या कर लेता हूँ, तो मेरा पूरा लाइफ जो है इट विल बी पीसफुल एंड हैप्पी. तो दैट इज वर्थ. एक साल में मुझे मेहनत करना इज वर्थ. तो उसी तरह इस जीवन में कह रहे कि इस जीवन में अगर हम तपस्या करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है. उसकी रिजल्ट ये है कि शुद्ध है दशमा, हम शुद्ध होंगे. तपस्या से हम शुद्ध होंगे. और हम शुद्ध जब होंगे, जैसे मान लो ये कि इस जो तपस्या कर रहे जो स्टूडेंट्स, उससे क्या रिजल्ट होगा, वो उनका रिजल्ट अच्छा होगा.
फिर ये मतलब ये तो उसमें आ गया ना, कष्टान का मान अरति, मतलब ये तो एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाली वो हो गया. ये तपस्या भगवान को पाने का तो नहीं हो गया,
ये भी भगवान की बता रहे, उसके साथ कंपेयर कर रहे कि वो भी तपस्या ही है. जो कोई पढ़ाई करता है वो भी एक तपस्या है. तो वो तपस्या करते हैं कौन, कोई तो हो सकता है वो तपस्या भी नहीं करते हैं. तो जब वो तपस्या नहीं करते तो उनकी पूरा लाइफ क्या है, मिजरेबल लाइफ. लेकिन जब वो तपस्या करते हैं तो एटलीस्ट फाइनेंशियल मिजरेबल सिचुएशन नहीं होता है. जब वो तपस्या करके अच्छा रिजल्ट करते हैं तो वो फाइनेंशियल मिजरेबल सिचुएशन से वो बच जाते हैं वो पूरा. लेकिन उनको दूसरा मिजरेबल सिचुएशन मिलता है, लेकिन एटलीस्ट वो वाला मिजरेबल सिचुएशन नहीं है. तो उस सिचुएशन, मिजरेबल सिचुएशन से, उस मिजरी से बचने के लिए उनको कुछ तो तपस्या करना पड़ता है. तो तपस्या इज रिक्वायर्ड इन एनी केस. अगर मेटेरियलिस्ट के लिए भी अगर कुछ अच्छा करना है तो भी उसको तपस्या चाहिए, बिना तपस्या के नहीं हो सकता. तो अगर तपस्या करना ही है तो यहाँ भी बता रहे कि तपस्या कौन सा करना चाहिए, कि तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य तपस्या करना चाहिए. जिसका गोल क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, जिससे ये जो जन्म मृत्यु का जो कष्ट है, सफरिंग है, कि वो आज का अगर वो तपस्या सिर्फ इस लाइफ तक ही है, उसके आगे फिर से हमें वो स्टडी करना पड़ेगा, फिर से हमें वो स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो ये क्या है, ये जो है ब्रह्म सुखम तो अनंतम, जो हम भगवत प्राप्ति का जो है वो दिव्य सुख वो मिलेगा और वो एटर्नल रहेगा. वो फिर किसी खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं.
तो जो तपस्या हम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में करते हैं उसको सही करने के लिए, तो उससे कैसे, मतलब वो तो बाकी लोग भी कर रहे हैं.
हाँ,
जो पढ़ाई करता हूँ तो बाकी लोग भी तो तपस्या कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी गेट क्लियर कर रहे हैं. तो उनकी तपस्या और मेरी तपस्या में मतलब हम क्या,
उसमें कोई फर्क नहीं है. लेकिन जब भक्ति के लिए जो आप तपस्या कर रहे हो वो आपकी दिव्य तपस्या है, ठीक है. उस तपस्या में और उनकी तपस्या तो सेम है. आप स्टडी कर रहे हो वो भी स्टडी, तो उसमें जो रिजल्ट है वो तो सेम है. लेकिन आप दिव्य तपस्या कर रहे हो, जो भगवान की भक्ति के लिए तपस्या कर रहे हो, वो तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसे तपस्या तो हर कोई करता है, इवन पशु भी करता है, सब करता है. लेकिन हमें क्या करना चाहिए, दिव्य तपस्या भी, दिव्य तपस्या ही करना चाहिए. ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर दैट तपस्या. उससे फिर
नॉर्मल तपस्या नहीं करना चाहिए,
नॉर्मल तपस्या नहीं करना चाहिए. वो नहीं कह रहे हैं कि वो तो चलेगा, लेकिन देट इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, कि वो ही सफिशियंट नहीं है. वो तो हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, वो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, वो तपस्या करना ही पड़ेगा. और वो क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम इस मेटेरियल बॉडी में हैं. और वो तपस्या फिर चलता ही रहेगा, वो कष्ट चलता ही रहेगा. तो अगर हम दिव्य तपस्या करेंगे उसके साथ साथ ऑफ कोर्स, तो क्या होगा, हमें जो जब हम लिबरेट हो जाएंगे तो हमें ये जो सस्टेनेंस के लिए भी वो कष्ट भी नहीं करना.
तो मतलब इस सेंस में जब हम तपस्या कर रहे हैं उससे अगर जो दिव्य तपस्या वाला एरिया है वो हैम्पर हो गया,
हाँ,
छोड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या इस केस में ठीक है उसको क्या तपस्या को मतलब लिमिट कर देना, कम कर देना?
ये आंसर कौन देगा यहाँ पे, इसके आंसर आप सुन नहीं रहे हो? अच्छा, हाँ बताओ क्वेश्चन क्या.
क्वेश्चन ये था कि जैसे ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के लिए हम जो तपस्या करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो भी हम कर रहे हैं, तो जैसे श्लोक में बताया जा रहा है कि आपको वो नहीं करना है, आपको दिव्य तपस्या करना है,
मतलब ये हमारा भौतिक पर्पज है ना, भौतिक पर्पज के लिए तो सारी दुनिया यही कर रही है, मतलब इससे हम भौतिक इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, बेसिकली क्या है कि फाइनेंस कमाएंगे, उसके बाद हम अपने परिवार को या अपने घर को या अपने आप को थोड़ा सा वो करेंगे, मतलब एलिवेटेड करेंगे उस क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र, परंतु वो कहते हैं ये तपस्या जो है ये तपस्या वास्तव में तपस्या नहीं है, ये तो दुनिया का नहीं।
आपका प्रश्न क्लियर है, प्रश्न आपको क्लियर है,
और बाकी करना था कि हमें मतलब अभी हम क्या करते हैं कि बैलेंस करते हैं, हम अपना डिवोशनल सर्विस का जो तपस्या है वो भी कर रहे हैं और मटेरियल वाला तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी केस में ये होता है कि हमें मटेरियल वाले केस में ज्यादा जरूरत होती है उधर मेहनत करने की, तो उससे हमारा डिवोशनल को हमें किसी तरह मैनेज या कम करना पड़ता है, लिमिट करना पड़ता है, तो क्या वो सही है या हमें
मतलब वो ये कि हमने एक्चुअली हम देखते हैं हम क्या है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम प्रायोरिटी अपनी फिक्स नहीं कर रहे, हम प्रायोरिटी जो दे रहे हैं अभी भौतिक को दे रहे हैं, मतलब हम भौतिक की तरफ प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं जबकि आध्यात्मिक की तरफ प्रायोरिटी कम दे रहे हैं, मतलब हम मैनेज जो कर रहे हैं ना जल्दी क्या होगा कि हम उस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमें ये ज्यादा मिले, यदि हम वास्तव में आध्यात्म की तरफ ज्यादा हमारा रुझान होता तो हम फिर उस तपस्या को ज्यादा टाइम देते या उस तपस्या के प्रति ज्यादा, अभी तो हम जो कर रहे हैं वो भौतिक के लिए ही ज्यादा सोच रहे हैं।
तो आपके आंसर क्या ये है कि उनको वो तपस्या कम कर देना चाहिए, जो कोचिंग में जा रहे हैं वो कोचिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, और यहाँ पे जो उनका ज्यादा टाइम देना चाहिए यहाँ पे सेवा में,
तो ये है कि फाइनली जो गोल है हमारा वो क्या
चाहिए, नहीं इसका आंसर दीजिए कि उनको उनको कोचिंग छोड़ देना चाहिए और यहाँ पे जो सैटरडे को आके रुक के सारे सेवा करना चाहिए, यहाँ उस कोचिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, ये सुनो
अभी हमारी जो स्थिति है उसके हिसाब से हमें दोनों में बैलेंस इस तरह से बनाना चाहिए कि उसको भी हम प्रॉपर निभा पाए और इसको भी प्रॉपर निभा पाए, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हम थोड़ी तरह समझ नहीं पाए हैं अध्यात्म को भी, तो इसलिए वो ड्यूटी भी हमारी है, परंतु उसके लिए हम इसको थोड़ा सा जो हम हमारी प्रायोरिटी है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, मतलब अगर हमें कम्प्रोमाइज करना होगा तो हम इधर कम्प्रोमाइज करते हैं उधर नहीं करते, ये हमारी जनरली वो रहे
दामोदर सर को इसका आंसर
अभी जैसे कि अभी जो हमारा करंट सिचुएशन है, अभी तो हम लोग अभी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कुछ समय बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हो सकता है अगर जो हाउस होल्ड में अगर जाना पड़ेगा तो हमें फाइनेंशियली खुद सपोर्ट करना पड़ेगा, इन दैट केस वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, तो फिर हमें अभी ये जो पीरियड है ट्रांजिशन पीरियड है इस पीरियड में तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, अगर एक्स्ट्रा टाइम इंजीनियरिंग तो देना पड़ेगा कि एक बार हम सेटल हो जाएं, फिर क्या होगा होल लाइफ टाइम के लिए हमारे पास अकॉर्डिंगली जितना भी हमारा इनकम आएगा अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज एवरीथिंग आवर फैमिली अकॉर्डिंगली आवर टाइम फॉर ड्यूटी सर्विस एंड एवरीथिंग सो दैट एवरीथिंग कैन गो स्मूथली, अदरवाइज वी विल नॉट डू दिस एट राइट नाउ देन होल लाइफ विल बी स्पॉइल्ड
तो आपको समझ में आया जो पॉइंट वो पॉइंट सही है उनका कि हमें ऑफ कोर्स डिवोशनल लाइफ को प्रायोरिटी देना चाहिए, अधिक से अधिक हमारा डिवोशनल लाइफ का जो तपस्या है उसमें करना चाहिए, और जो है जितना मटेरियल तपस्या है या अननेसेसरी एफर्ट्स है उसको हमें कम करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि ये पूरा लाइफ का स्पेन लेके चलो, ठीक है, इट्स नॉट टूडेज की पॉइंट, आज मैंने इसको ज्यादा दे दिया इसको कम कर दिया और कल वो जीरो हो जाए, आज मैंने डिवोशनल सर्विस पूरा 100% दे दिया या 70% दे दिया डिवोशनल का तपस्या में और 30% दिया मैंने उसमें है ना जो मेटेरियलिस्टिक उसमें जो हमारे बॉडीली नीड्स के लिए, और कल जो है मेरा जो तपस्या बॉडीली नीड्स के लिए आई एम फोर्स टू डू बॉडीली तपस्या 100% और डिवोशनल सर्विस जीरो, तो मैं सिर्फ आज का लेके नहीं चलना चाहिए, हमें पूरा लाइफ का स्पेन देखना है कि पूरा लाइफ लॉन्ग लाइफ की स्पेन में कलेक्टिवली हम डिवोशनल का जो वो है तपस्या उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते। तो प्रभुजी जी से अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर अभी हमारा रिक्वायर्ड है कि हमें इतना मेटेरियलिस्टिक उसके लिए हमें है ना एग्जाम के लिए हमें इतना चाहिए, तो ये एक साल के लिए चाहिए होगा या दो साल के लिए चाहिए होगा, अगर वो दो साल हम दे देते इतना और इसको थोड़ा सा कम करते इसको दो साल दे देते उसके बाद जितना समय है I can drastically increase this to 50% to 60% क्योंकि वहाँ पे मैं already मेरा उतना मुझे नहीं करना पड़ेगा उस समय, उतना टाइम मुझे नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक जगह वो एक चीज अचीव हो गया। और अगर मैंने यहाँ पे नहीं दिया तो उस समय वहां पे मेरे पूरा लाइफ लॉन्ग मुझे वो तपस्या करना पड़ेगा, इधर भागना पड़ेगा उधर भागना पड़ेगा और उस समय फिर मैं इसको कर ही नहीं पाऊंगा, आई विल बी कम्प्लीटली मेंटली डिस्टर्ब ये वो और पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो इसके लिए मुझे उस चीज को तो एक ब्रॉड विजन लेके जिसको कैलकुलेट कर पूरा लाइफ की बात है, ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? तो अब उसमें पॉइंट है कि उसमें एक एक कैच है उसमें कि ये नहीं कि बिल्कुल इसको जीरो कर दें हम, कि हम उस तपस्या को रखेंगे इसमें एक मिनिमम हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि उतना मिनिमम से नीचे नहीं जाएंगे दिव्य तपस्या में, कि उसको मिनिमम रखेंगे ताकि ये हमारा कंटिन्यू रहे कि वहां पे जब मैं सेटल हो जाऊं, मैं पास हो गया, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए तो मुझे मैं बाकी जो टाइम है मैं फिर इसमें दे सकूं। ये देने के लिए मुझे स्पिरिचुअल लाइफ को जिंदा रखना पड़ेगा, जिंदा रखेंगे तभी वहां पे दे पाएंगे, ये मरी गया तो फिर वहां पे दे भी नहीं सकूंगा मैं। तो इसलिए इसको जिंदा रखने के लिए एटलीस्ट मिनिमम जो है वो हमें तो मिनिमम देखे बाकी जितना हमें वहां पे उतना हम दे सकते हैं एंड देट इज फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड 1 year 2 years 3 years विथ फुल ऑब्जेक्टिव कि 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर मुझे स्टेबल होना है, मुझे एक जॉब को लेना है और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा चीज टाइम इसमें ले, उस ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो कि आफ्टर एज सुन एज आई विल गेट ए जॉब प्रॉपरली आई विल इमीडिएटली इंक्रीज माई दिस टाइम। ये ना हो कि उसके बाद फिर हम जो है भूल ही जाए कि आप तो इतना ही चल रहा है इतना ही चलेगा। इफ दैट इज वेरी क्लियर टू यू, you are honest to yourself, you are honest to Krishna knows in the heart कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव से हम कर रहे हैं, इसको उसके पीछे पर्पज क्या है, अगर वो चीज है क्लियरली।
एक छोटा सा है कि जो प्रभुपाद एक स्टेटमेंट बोल रहे थे वो कह रहे थे कि वट एवर यू गेट इन मटीरियल वर्ल्ड दैट इज ऑलरेडी फिक्सड, अगर दुख मिलना है तो दैट इज ऑल्सो फिक्सड, सुख मिलना है दैट इज ऑल्सो फिक्सड, सो वाई स्ट्रगल फॉर दैट। मतलब मैं वो स्टेटमेंट मतलब क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, उसका क्या मतलब है?
ये भी सही है ना, लेकिन ये चीज ऑफकोर्स हमें जितना मिलना है मिलेगा, आप हम छोड़ भी सकते हैं कम पे, पर हमारा कॉन्शियसनेस अभी ये नहीं है, सो वी हम उस कॉन्शियसनेस में अगर फेल होते हैं या कुछ हम नहीं कर पाते हैं तो हमें लगेगा कि हम इसकी वजह से नहीं फेल, इसकी वजह से फेल हुआ और फिर हम इस चीज को छोड़ देंगे, हमारे उस कॉन्शियसनेस में नहीं है कि ये मेरा जो है फेट में ही है, मेरा प्रारब्ध में ही इतना ही है एंड आई शुड डू दैट, तो वो नहीं है कि और है ना कि वो करना है। तो ऑफकोर्स हमें अगर प्रयास वो नहीं करना है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए है ना, लेकिन प्रयास तो हमें करना है, वर्क तो हमें करना है, ठीक, एफर्ट तो करना है। और जब आप उस एफर्ट से करते हो कि आगे जाके ये सारे चीज कृष्ण की सर्विस में ही लगना है ना, तो इट बिकम्स प्यूरिफाइड मेटल कॉन्शियसनेस से नहीं
होता। ये एफर्ट भी दिव्य तपस्या हो सकता है?
हो सकता है, अगर आपका वो जितना कितना आप प्योर कॉन्शियसनेस से इसको कर, ठीक है,
तो करने के बाद जैसे ये कुछ करना चाह रहे हैं इसके वो लेवल पा लिया है। और मैं एक लेक्चर सुन रहा था उसमें ऐसे ही वो बता रहे थे कि तो वो कहते हैं कि प्रभु जी मैं जो है उन्होंने कहा कि आप जो है मतलब ब्रह्मचारी आश्रम जो है इधर, तो कहते प्रभु जी अभी तो मैंने जो है ना वो मतलब बीटेक किया है तो मैं चाहता हूँ एक बार दिखाना कि भाई मैं भी जॉब पा सकूँ, तो कहते फिर वो दिखाते ही रहे, फिर उसके बाद जैसे उनको पद मिला पैसे आने लगे, कहते तो वो अब बड़ा डिफिकल्ट हुआ
थोड़ा
सा, ये जो है क्योंकि भौतिक लालसा जब
इसीलिए तो कह रहे थे उसको जिंदा रखना पड़ेगा, डिवोशनल लाइफ को जिंदा रखना पड़ेगा जिससे उसमें भी प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टाइम ज्यादा देना से ही प्रोग्रेस, यू हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी, मैंने टाइम तो कम दे रहा हूँ तो कृष्णा मैं इतना नहीं दे पा रहा जितना देना चाहिए, तो उस टाइम को बिल्कुल सिंसियरली बिल्कुल सीरियसली करो तो एडवांसमेंट भी होगा, तो एडवांसमेंट होता रहेगा तो वो कभी, और उनको क्लियर है कि मेरे को इसने दो साल के बाद करके फिर मुझे इसमें और इंक्रीज करना, ही शुड बी कीप हिज वर्ड्स, वी शुड कीप आवर वर्ड्स, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने आप
को यस इस पद पे जाना है तो यहां तक स्टेबल है, क्योंकि जनरली फिर उसके बाद भी
बिल्कुल तो अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है ओके। तो ये फर्स्ट था, टाइम भी तो उसके आगे ये सब श्लोक याद करने के लिए इसे, तो अभी तो टाइम नहीं है तो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। महत सेवम द्वारम आहु विमुक्तिस तम द्वारम यशितम संगी संगम महांतस्ते समचित्त प्रशांत विमानव सुरिद साधवये कि महत सेवम द्वारम, अगर हम भक्तों का भगवान की शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो महत द्वारम वो हमारे लिबरेशन की पाथ को खोलता है, और किसका संग करने से जो अधोगति होता अधोगति होता है हमारा नरक के द्वार खोलता है, किसके संग करने से योषित संगी संगम, योषित संगी संगम मतलब जो स्त्री संगी है, जो स्त्री संगी का संग करने से या विषयी विषयी का संग करने से हमें नरक का द्वार खुलता है। तो उसमें प्रभुपाद के लिखते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज जंक्शन की तरह, जंक्शन की तरह सुनिधि प्रभु है ना, जंक्शन की तरह, तो जंक्शन होता है कि उसमें से आप दो जगह पे जा सकते हो, दो जगह तीन जगह जितना, तो यहाँ से दो जगह, एक जगह आप लिबरेशन के लिए और एक जगह आप नरक की तरह, तो लिबरेशन की तरफ जाने के लिए हमें लिबरेटेड सोल की एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड, उसमें जाने के लिए हमें स्त्री संगी, तो ये बताया जाता है कि स्त्री संगी जो है वो मोर डेंजरस देन स्त्री का संग है ना, स्त्री का डायरेक्ट संग से भी ज्यादा डेंजरस क्या है, स्त्री संगी का संग है ना, तो क्योंकि वो जो है वो अटैच्ड और वो कॉन्टेमिनेटेड कॉन्टेमिनेशन है ना, तो कॉन्टेजियस है, तो अगर कोई स्त्री संगी जो स्त्री से बहुत अटैच्ड है उनकी संग करते हैं तो हमारे भक्ति स्पॉइल होना ही होना ही होना, ठीक है हाँ। तो ये तो हमारे लिए इजी नहीं है ना, वो भक्ति इज नॉट मतलब है ना सच्ची ये मैं नहीं कहता, तो इसलिए हमें बेसिकली इन लोगों का संग को थोड़ा हमें डिस्टेंस रखना चाहिए और हमें खुद केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उससे हम पॉल्यूट होंगे ही होंगे। यहाँ पे प्रभुपाद उसका चैतन्य चैतन्य से भी कोट करते हैं कि असत संग त्याग वैष्णव आचार, एक असाधु है ना स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्ता, तो उसमें स्त्री संगी का ऊपर स्पेशली मेंशन किया जाता है, तो ये तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा अटैच्ड है स्त्री से वो हमें केयरफुली डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज हमारा माइंड बहुत पॉल्यूटेड हो जाता है, हमारा कंट्रोल में नहीं। आगे जाके और भी आता है, अगले चैप्टर में बताते हैं कि जो है मन को जो है हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वो पूछ रहे थे कि ऋषभदेव ने इतना कठोर तपस्या या इस तरह से क्यों किया, वो तो है ना आला राजा थे और वो हाँ वो पूछ रहे थे परीक्षित महाराज, तो उनको इतना ऑस्ट्रेटी करने की क्या जरूरत है, तो वो रिप्लाई कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी कि जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि वो मन को जो है वो मन को कभी ट्रस्ट नहीं करते, तो उसमें लिखा हुआ है 5.6.3 हाँ सारे वो बताते हैं, तो उसमें बता रहे हैं श्रील शुकदेव गोस्वामी से, ओके हाउएवर आफ्टर कैप्चरिंग एनिमल्स ए कनिंग हंटर डज नॉट पुट फेथ इन देम फॉर दे माइट रन अवे। तो जो हंटर जो है वो जब कोई पशु को पकड़ता है तो पशु को विश्वास नहीं करता, क्यों, जो छोड़ के चलाएगा, जिस मान लो केज में डाला और केज का वो खुला छोड़ दिया, कोई नहीं आप तो आ गए मेरा हाथ में, एक दिन दो दिन है कोई बात नहीं आराम से छोड़ दिया, वो चला जाएगा है ना। तो वो जानता है कि ये जो पशु है ये रहना नहीं है, ये चला जाएगा, तो इसलिए वो उसको पशु के ऊपर फेथ नहीं रखता। तो उसी तरह सिमिलरली दोज हु आर एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ डू नॉट पुट फेथ इन द माइंड, इंडीड दे ऑलवेज रिमेन विजिलेंट एंड वॉच द माइंड्स एक्शन। आत्मराम भक्त गुरु है ना, तो दे ऑलवेज शुड बी क्या, विजिलेंट मतलब सतर्क है ना, पहाड़ादार जो होता है ना उसी तरह वॉचमैन की तरह, एंड वॉच द माइंड्स एक्शन। माइंड्स का एक्शन, तो जैसे कोई जो हम लोग जब भक्तों के संग से बाहर रहते हैं, जैसे जो गृहस्थ हो आम लाइफ में जाएंगे तो हम फैमिली में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यू शुड बी विजिलेंट, नहीं ऐसा कोई देखने वाला नहीं है, तो यू शुड बी विजिलेंट कि मेरा माइंड क्या कर रहा है ना, व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। उसी तरह एक ब्रह्मचर्य को भी है ना, व्हाट आई एम डूइंग, मैंने टाइम सो के मेरे पास काम नहीं है, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, तो क्या मैं आराम से रेस्ट कर रहा हूँ जरूरत से ज्यादा, या मैं है ना सेवा कर रहा हूँ ठीक से, तो वी शुड बी विजिलेंट। और ये बताने तो माइंड पे फेथ नहीं करता है, कौन नहीं करता है, जो एडवांस्ड इन डिवोशंस, एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ, उनके स्पिरिचुअल लाइफ में अगर एडवांस है तो ही नोज दैट माइंड कैसे, ठीक है। इसके आगे लिखा है, उसके आगे सुनिए, बहुत अच्छा, ए अनचेस्ट वोमेन is very easily carried away by paramour and it sometimes happens that her husband is violently killed by her paramour. If the yogi gives his mind a chance and does not restrain it, his mind will give facility to enemies like lust, anger and greed, and they will doubtlessly kill the yogi. So yahan pe mind ko ek unchaste woman ke sath compare kiya hai, कि जिस तरह से अगर घर की जो स्त्री है पत्नी है वो अगर अनचेस्ट हो जाता है और वो अगर किसी और उनका पैरामाउंट हो जाता है तो आगे जाके दिखाई देता है कि वो स्त्री होते हुए वो अपने हस्बैंड को मरवा देता है ना। तो उसी तरह माइंड, आइडियली माइंड हमें सर्व करना चाहिए, लेकिन माइंड अगर अनचेस्ट हो जाए मतलब तो वो माइंड जो है हमें मरवा सकता है। तो यहाँ पे बताया उसने पर्पज में प्रॉपर लिखते हैं कि ए अनकंट्रोल्ड माइंड, एन अनकंट्रोल्ड माइंड एंड एन अनचेस्ट वाइफ आर द सेम। अनकंट्रोल्ड माइंड एंड अनचेस्ट वाइफ आर सेम डेंजर है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो हु आर एडवांस्ड they know and they vigilantly they should watch every action। अगर हम अपने में खुद ही खुद अलर्ट हैं खुद के एडवांसमेंट में तभी हम भक्ति को रक्षा करके रख सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हमारे पास 100 एक्सक्यूज होंगे देने के लिए कि मुझे अभी तो ये बिजी चल रहा है, अभी तो ये जॉब ढूंढना है, अभी तो हमारा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तो ये कर रहे हैं, अभी तो वो कर रहे हैं, वी शुड सी कि है ना व्हाट आई एम डूइंग, एम आई ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, है ना। तो वो चीज जो है ना, जब तक नहीं होंगे खुद, कोई पुश करके नहीं कर सकता। एक लेवल तक कर सकते, आप शुरू में डिवाइस में आप नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे, बुलाना वो करना, लेकिन आगे जाके लाइफ लॉन्ग हम भक्ति कर सके टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, कि मुझे बाद में अफसोस ना होगी क्यों क्यों मैंने बीच में हमने अच्छा से नहीं किया, कि एंड ऑफ लाइफ हम जो अभी जो शुरू किया है उसको हम कंटिन्यू कर सकें, वो अगर हमें चाहिए, वी शुड बी विजिलेंट कि मेरा माइंड ये नहीं सोचना चाहिए आई एम ग्रांट आई टेक इट ग्रांटेड कि हाँ उसी पॉइंट में आ रहा है कि मैं अभी 2 महीना 6 महीना आई विल नॉट गो टू द टेम्पल ऑल्सो, आई विल कम्प्लीटली स्टॉप एवरीथिंग बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन वन थिंग एंड आई कम्प्लीटली स्टॉप एवरीथिंग, आई कम्प्लीटली स्टॉप एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, आई कॉन्स्टेंटली स्टॉप गोइंग टू द टेम्पल chanting and this, I don't know how I am chanting, just doing, okay, I am doing my 16 rounds and I am no longer kind of accountable to anyone, you know. So if we think like that, of course no one can force us, but it is not good for us. So isliye we should be theek hai, okay. ओके तो इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, खास करके सीनियर डिवोटीज के लिए, हम लोग ऑल ऑफ अस, सो वी हैव टू विजिलेंट, है ना। तो एज लॉन्ग एज वी आर ऑनेस्ट, वी हैव जेन्युइन पर्पस, एवरीथिंग इज ओके, कृष्णा अंडरस्टैंड्स इट, बट एटलीस्ट वी शुड बी अलर्ट। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि माइंड को इतना बार हमें 100 बार जूता मारना चाहिए और रात को सोने से पहले सोचना चाहिए कि एवरी डे हमने क्या आज नॉन कृष्ण कॉन्शियस वे से किया, क्या मेरा माइंड में थॉट्स आया कि क्या है ना गलत किया, एंड देन वी शुड आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम कृष्ण कि कृष्ण मेरा माइंड में ऐसे थॉट्स आया, सो आई एम व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी आई एम, प्लीज प्यूरिफाई मी, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू, आई डोंट वॉन्ट टू लीव द ड्यूटीज, I want to increase my sadhana, I want to improve the relation with the devotees. So this way, and every day we should find out ki maine kya kiya, kaise mera jo subah utha us samay kya consciousness tha, maine jo reactions kiya maine kya consciousness tha kaise, and we notice, and we every day if we pray to Krishna specifically for what we noticed and what all thing was not appropriate, and specifically mention those things to Krishna, that Krishna, this is where I did mistake, please help me, please give mercy, then it will have more effect. And so this way, and it will be good for us, it will be good for us. So uske aage phir और एक जो फोर्थ श्लोक है वो बहुत अच्छा है, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतया अप्रिणति न साधु मन्ने यत आत्मन यम अशन अपि क्लेशदा आशदेह। तो ये बताएं नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, प्रमत्त हम प्रमत्त हो जाते हैं जब हम अपनी लाइफ का एम सोचने लगते हैं कि सेंस एंजॉयमेंट, जब सेंस एंजॉयमेंट सोचने लगते हैं अपनी लाइफ का एम, तो हम क्या बन जाते हैं, प्रमत्त, प्रमत्त मतलब हाँ पागल हाथी नहीं पागल हाथी बोले थे वो तो पागल, तो पागल का कहीं वो है ना, मैं भूल गया एक्चुअली, है ना, एक मत्त तो किसका है, मद अच्छा अच्छा, तो उसमें एक है मत्त, तो मत्त से उसके ऊपर शायद प्रमत्त है और फिर शायद उन्मत्त है और ऐसे कुछ है ना, तो 2-3 लेवल है मैडनेस का भी, तो मैडनेस का भी 2-3 लेवल है। तो यह प्रमत्त मतलब मैडनेस से भी ऊपर है ना, कि अच्छी तरह। तो जब हम समझ सोचते हैं कि लाइफ का एम वो है, इंद्रिय सुख ही है, तो प्रमत्त। प्रमत्त का मतलब कैसे सिम्टम है कि वो प्रमत्त है कि नहीं, वो कुरुते क्या कार्य करते, विकर्म। तो आपने सुना होगा पहले कि तीन टाइप के कर्म है, है ना, तो विकर्म, तो विकर्म करेगा क्यों कोई, क्यों प्रमत्त है तभी। और प्रमत्त क्यों है, क्योंकि तो आप कभी देखते हैं डिवोशन है, डिवोशन लाइफ में कोई किसी को ऑफेंस कर रहे हैं या कोई, क्यों क्यों करते हैं हम, क्योंकि हम प्रमत्त है, प्रमत्त हो जाते हैं अपनी अपनी अज्ञानता से, है ना, अपनी सेंस को ग्रेटिफाई करने के लिए कभी कभी हम हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं, और फिर वी ऑफेंस सम डिवोटी आल्सो, है ना, वी डिराइव सम प्लेजर फ्रॉम दैट थिंग। तो ये बता रहे, तो फिर हम विकर्म करते हैं, फिर हम अपराध करते हैं, फिर हम जो है सिंफुल एक्टिविटी करते हैं।
कैसे बच सकते हैं,
कैसे बच सकते हैं, दी सेम मैन। प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं प्रमत्त मतलब ऑलरेडी पागल हो चुके हैं हम लोग, ठीक है, मीन्स ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड। प्रभुपाद ये भी कहते हैं ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड, एंड सो प्रभुपाद कहते हैं ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड है तो और इंटॉक्सिकेशन की जरूरत ही नहीं है इस संसार में। इंटॉक्सिकेशन को तो हटा ही देना चाहिए, क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड ऑलरेडी है हम। तो बेसिकली बाई चैंटिंग ही वी बिकम सेम पर्सन बाई डिवोशनल सर्विस। तो एम ऑफ लाइफ विल बी चेंज्ड टू आवर सर्विंग टू कृष्ण। एम ऑफ लाइफ इज टू सर्व टू कृष्ण, दैट आई वांट टू प्लीज कृष्ण। तो ये भक्ति का धीरे 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 आपको वो एम आएगा कि मेरा एग्जिस्टेंस का एम ये है, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। और उसके आगे और एक श्लोक है बहुत अच्छा, आठ नंबर श्लोक, कुम शास्त्रीय मैथुनी भावमेतम तयोर मिथम हृदय ग्रंथि माहु यत गृह क्षेत्र सुप्त वित्त जनस्य मोहयम अहम मामेति। ये श्लोक आप लोगों ने सुना होगा बहुत जगह पे। तो ये यही है कि हम आई एंड माइंड, ये आई एंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट है ये बढ़ता है जब हम स्त्री का और घर का और ना सारे चीज को सोचते हैं, ये अपना है, ये मेरा है, और ये चीज बढ़ने लगता है, ठीक है। तो वी अट्रैक्टेड टू द बॉडी, होम, प्रॉपर्टी, चिल्ड्रेन, रिलेटिव्स, वेल्थ। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कभी कभी जो सन्यासी हैं या जो है ना रिनाउंस्ड हैं उनको भी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना अटैचमेंट आई एंड माइंड का। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि उनको किसी पोजीशन से या किसी जो प्रॉपर्टी से उनको लगता है कि ये मेरा है, या ऐसे जनरल बता रहे थे कि जनरल जो साधु होते हैं उसमें। तो फिर बता रहे हैं लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना एक फैमिली मेंबर्स का, जो सो कॉल्ड हाउस होल्डर्स का जो अटैचमेंट होता है उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो सो कॉल्ड हाउस होल्डर्स का जो ये अटैचमेंट उसको त्याग करना बहुत कठिन, बहुत कठिन। फिर उसमें आगे ये भी बताते हैं कि लेकिन एक्सेप्शन भी है, तो जो ग्रेट डिवोटीज हैं उनकी वाइफ जो है राधा उनको हेल्प करते हैं टू डिटैच होने के लिए, पर प्रभुपाद लिखते हैं ये वेरी वेरी रेयर केस, इन जनरल ये जो है ये अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है कि मेरा घर, मेरा वो, मेरा फैमिली, मेरे पत्नी, मेरा ना संतान, ये अटैचमेंट बहुत है। और ये बता दें कि ये जो है ये हमारा बंधन की कारण है। और आगे और एक श्लोक है जो लास्ट श्लोक, ठीक है, वो तो और सुनिए जी कितना स्ट्रांग है भागवतम क्या है, बिल्कुल हाँ धर्म प्रज्ञ तो कई टपा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा क्या है इतना स्ट्रॉन्गली बता रहे सब कुछ है? तो लेकिन स्ट्रांगली बताना ही तो जो है एक्चुअल मर्सी है, क्योंकि हम आए यहाँ पे भगवान के धाम में जाने के लिए, अगर वही चीज नहीं हो पाया तो फिर बाकी चीज का क्या फायदा, ठीक है ना। तो वो चीज ताकि हो इसलिए भागवतम हमें स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज हमें वो करेगा, बंधन सृष्टि कर सकता है,
और हमें कैसे होना चाहिए, कितना हमें और एडवांस होना चाहिए, ठीक है।
श्लोक नंबर 18, ये भी आपने सुना होगा, गुरु ना शशत सजन ना शशत, पिता ना शशत जननी ना शशत, दैवम ना तत्सत ना पतिस च नाशन ना मुचयत समुपेत मृत्युम।
ये बहुत स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन है।
क्या है? वन हु कैनॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. है ना? क्या नहीं बनना चाहिए? देखिए, he should not become a क्या?
स्पिरिचुअल मास्टर, तो ये तो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई आप में से कोई बन तो नहीं रहे अभी, है ना? तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं, इसका हमारा बाहर है, है ना? दूसरा क्या है? एक फादर, फिर एक हस्बैंड, ओके, फिर एक मदर और ए वर्शिपेबल डेमिगॉड। तो इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। तो पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि अगर हम हस्बैंड बन रहे हैं, देन इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द डिपेंडेंट्स, क्या बोल रहे हैं, फ्री फ्रॉम रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। दैट बिकम्स अ ड्यूटी, है ना? इट्स रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। सोचिए, हम अपना ही क्लियर नहीं है कि हम अपना रिपीटेड बर्थ एंड डेथ से जा सकते हैं कि नहीं। अपने माइंड को कंट्रोल करना कितना टफ है, अभी हमने स्टडी किया कि कितना विजिलेंट रहना पड़ेगा, कितना हो, हम कैसे दूसरे का माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या हम उनको बता सकते हैं कि दे बिकम प्योर डिवोटी एंड गो बैक टू कृष्ण। क्या हमारे पास शक्ति है? तो जिनके पास शक्ति है ये बता रहे कि उनको बनना चाहिए, दे शुड डू। और दूसरा तरह से जो बने हैं उनको सोचना चाहिए कि हमें उनको जो है जन्म मृत्यु से मुक्त करना है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमारे पास शक्ति नहीं, हम अपने आप को उद्धार नहीं कर सकते, हम दूसरे को कैसे करें, लेकिन शायद प्रभुपाद कर दें। तो अगर हम प्रभुपाद का या जो गुरु का अगर हम सिंसियर सर्वेंट बनते हैं और उनसे प्रे करते हैं, तो शायद वो उद्धार करें। और उनको अगर उनकी इंस्ट्रक्शंस को हम बताएं और उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में प्रयास करें, कराने में, और हो सकता है उसमें भी फेल हो, क्योंकि वो पूरा ही है ना इंडिपेंडेंट, हमारा बात को कैसे हो सकता है ना भी एक्सेप्ट, लेकिन एटलीस्ट हम तो पूरा अच्छा से करें। जब हम रेस्पॉन्सिबल बनते हैं किसी और के लिए, तो पहले तो सबसे पहले हम खुद इतना बने, तो उससे हमारा जो अभी सर लेक्चर की जो सबसे शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी और का चीज भी डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम उनके लिए अकाउंटेबल बन रहे हैं, तो हमारा भक्ति को और सीरियस हो जाना चाहिए कि इसमें नॉट ओनली माई लाइफ, मुझे अपने आप को ही सिर्फ भगवान के धाम में लेके नहीं जाना है, उनको भी लेके जाना है। तो मुझे वो बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए, बहुत ज्यादा कृपा चाहिए। और उसकी शक्ति तो है नहीं, तो शक्ति गुरु का है या प्रभुपाद का है, तो मुझे उनको ज्यादा प्रसन्न करना पड़ेगा ताकि वो मेरे ऊपर भी कृपा करें, उनके ऊपर भी कृपा करें। सो यू हैव टू बी लाइक दैट। तो इसीलिए ब्रह्मचारी बहुत अच्छा है, उनको किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपने आप का रेस्पॉन्सिबिलिटी है बस, है? तो खुद अगर हो गया तो दैट्स फाइन। तो
हम रिपीटेड लाइफ बर्थ एंड डेथ से छुटकारा मिल जाएगी,
हाँ।
और इसे देख सकते हैं आप लोग,
कैसे देख सकते हैं भगवान के प्रति प्रेम हो रहा है कि नहीं, अगर भगवान के प्रति प्रेम है तो बस इस मेटेरियल वर्ल्ड आपका अगर बिल्कुल कोई अटैचमेंट नहीं है आपको, है ना, कृष्ण से अटैचमेंट है, प्रेम है, कृष्ण के विरह में इतनी रह सकते हैं, शून्य इतम जगत सर्वम
ऐसे पोजिशन दे सकते हैं
मतलब यहाँ पे तो वही बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो, और उसको दूसरा तरह से ले लो कि अगर है तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमें एटलीस्ट वो हाँ उनको करना, और एटलीस्ट अभी के लिए हिसाब से तो हम डिवोटी हो, पहले तो हम प्रॉपर अच्छा से डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, एटलीस्ट गुरु के आश्रय में है और गुरु की कृपा से फिर हम ले सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर होकर ही हम ले रहे हैं, क्योंकि लाइफ ऐसे है कि अभी का सोसाइटी के हिसाब से भी हमें चलना है, या जो भी सिचुएशन है हमारे फैमिली की सिचुएशन है इसके हिसाब से भी चलना है, सो वी नो कि वी आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दैट बट वी हैव टू, है ना, सो वी हैव टू बी मोर डिपेंडेंट आस्किंग फॉर मर्सी एंड उनको नोइंग, एटलीस्ट वी शुड नो व्हाट इज माई रेस्पॉन्स, जब हम कर रहे हैं entering into gṛhasthāśrama, you should know what is my response.
Preaching ke sense mein bhi ho sakta hai, preacher jab tak nahi ban sakte tab tak hum jaise qualification
nahi hai, wo bhi hai, wo bhi hai, lekin jab yahan pe instruction aa jata hai ki hame karna hai, hai na, that is as a service we have to do, with the knowing that we cannot do, then we cannot make anyone devotee. Prabhupada will make everyone devotee. We just will just do this service on behalf of Guru and Krishna. So we are not taking a position of spiritual master or position of any responsibility in that case. We are just acting on behalf of spiritual master. We cannot say, I will take care of you. Don't worry, I will see. No, we cannot say that. We have no power, nahin? Okay. So, this is what,
Krishna
said that we should never become a demigod, worshipable demigod. Haan. Demigod should not accept worship of the people. Yeah, worship karo and they do not give them liberation. तो डेमी गॉड शुड ऑल्सो लाइक लॉर्ड शिवा, तो जो एक आपने पढ़ा होगा जो ब्राह्मण ने आस्क पूछा कि क्या है, तो बताया कि आप जाओ है ना उनसे मांगो फिर भगवान की भक्ति, तो डेमी गॉड भी है ना, जो अगर डेमी गॉड की वर्शिप करते हैं तो धीरे धीरे वो भक्ति में देते हैं, उनको भक्ति मिलता है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं होना चाहिए, उस पोजिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पोजीशन के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं सिर्फ पोजीशन चाहते हैं तो वो सही नहीं, शुड नॉट एक्सेप्ट वर्शिप। तो इसीलिए तो वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए उनको करने के, जो कर पा रहे हैं 100% श्योर उन्हीं को ही हमें आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण का क्या जरूरत है उनका, है ना, उनके उसमें, लेकिन उनको हम अप्रोच जो भी करते हैं तो भगवान को पाने के लिए, और उनके पास शक्ति होते हैं, दे कैन गिव अस गिव ब्लेसिंग्स, समझ रहे हो, तो हर एक के लिए एवरीवन इज अकाउंटेबल। यहाँ पे इससे ये भी पता चलता कि डेमीगॉड इज ऑल्सो अकाउंटेबल। प्रभुपाद बता देते हैं एक बार, वो जो मुंडक मुनि का आपने पढ़ा होगा ना, वो जो विदुर जी को आना पड़ा यहाँ पे, तो बोले कि जमराज जो है वो बारह महाजन है, तो उनमें से भी थोड़ा सा भी गलती हो गया तो ऐसे अकाउंटेबल। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे नहीं कि मतलब डेमिगॉड हो गया तो वो अकाउंटेबल नहीं है, जितना बड़ा पोजिशन उतना बड़ा जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ, हाँ बड़ा पोजीशन चाहिए, हाँ नहीं चाहिए।
टीचिंग में भी अकाउंटेबिलिटी होती है, अगर कुछ हो गया
हाँ वो तो अकाउंटेबल हाँ हम पूछेंगे आपसे ये ऐसा क्यों हुआ, आई हैव टू आंसर. नहीं आप कहते हैं मेटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिवोटीज का लिस्ट कहाँ है, क्लास में अटेंडेंस क्यों नहीं हुआ, यू हैव टू आंसर. यस
जो डेमिगॉड्स का पोजीशन है उसमें आपने डिजायर तो चलती नहीं है, बाय नेचर और लॉ ऑफ नेचर मिलता है.
होता होगा भगवान ने पूछ के देते होंगे, मतलब मुझे नहीं पता है कि डेमिगॉड का क्या आपका क्या क्वेश्चन था. सॉरी
डेमिगॉड जो बनते हैं वो अपने डिजायर से तो बनते नहीं है, वो बाय लॉ ऑफ नेचर हमें डेमिगॉड की बॉडी मिलती है. उसमें हमारा कहाँ तक कंट्रोल है
उसमें, नहीं भी है उसके बाद एक्शन में तो कंट्रोल है ना, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कैसे एक्टिविटी करना चाहिए उस पर तो है ही, अकाउंटेबिलिटी को समझना तो है ही ना. वो तो
अगर पूरी लाइफ स्पैन देखा जाए तो एजुकेशन जो सिस्टम होता है, एजुकेशन का टाइम पीरियड होता है, उसमें एक स्टूडेंट का कंट्रोल होता है कि वो कितने बजे पढ़ता है और कितने बजे तक पढ़ता है. वो बैलेंस करने अगर कह रहा है कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ को कम कर देता हूँ, ज्यादा पढ़ लेता हूँ, मेरा बीएड यूपीएससी पीसीएस से कर, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद उसका जॉब का कोई कंट्रोल नहीं होता. हम 8 घंटे की नौकरी नहीं करते, मोस्टली 12 to 14 hours करते हैं, वो बैलेंस तो कभी नहीं होगा. तो हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए एक लाइफ स्पैन के लिए, एजुकेशन ले ली, जॉब में भी आ गए, वैकेंसीज और अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल रही है और पैसा भी अच्छा मिल रहा है, हमारी इस टाइम क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, हमें सब कुछ मिल रहा है तो हमें किस चीज को चुनना चाहिए, ये ह्यूमन लाइफ या स्पिरिचुअलिटी हो जाए तो आंसर क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिकल समाज को देखें तो मनी इज द मोस्ट प्रायोरिटी, तो हमें क्या स्वीकार करना चाहिए. बाहर से प्रेशर कुछ और है, अंदर से इच्छा कर रही है एक्यूमुलेट करने की भी, बट ड्यू टू साधु संग दोनों में कंफ्यूजन है, लड़ाई हो रही है, किसको जीतना.
देखो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना चाहिए, ठीक है, लाइफ में आपको कितना चाहिए, आपका लाइफ का प्लान अपने हिसाब से करना. ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी का भी है तो हो सकता है हमारा अंदर भी सबका अंदर डिजायर हो, कौन नहीं चाहेगा कि मेरा उतना ना हो, ठीक है, लेकिन अपने पोजीशन के हिसाब से भी हम लगाते हैं कि मेरा पोजीशन इतना है ही नहीं, है ना. सचिन तेंदुलकर को नहीं, मैं नहीं बन सकता, ठीक है, अपने एबिलिटी भी हमें पता होता है कि मेरा इतना एबिलिटी है, इतना नहीं बन, तो मेरे को जितना है उतने हिसाब से इतना मिल जाए आई एम खुश, मेरे खुश है ना. तो सबका अपने अपनी एटलीस्ट एक वो होना चाहिए कि कितना चाहिए मुझे और उस हिसाब से. तो प्रभुपाद कहते हैं बेस्ट तो वही है कि जितना कम चाहिए हमें, हमारे नीड्स को हम कम करते हैं, दो चीजें, हमारे नीड्स बढ़ाए और एफर्ट बढ़ाए, है ना, और एफर्ट और हम नहीं कर पा रहे हैं इतना ज्यादा तो हम नीड्स कम कर देते हैं. थैंक यू सर, आपकी एसोसिएशन के लिए, ठीक है. तो हमारा नीड्स को हम कम कर, तो नीड्स को कम करने का आर्ट हम भक्ति में आके ही सीखते हैं. जैसे आप लोग यहाँ पे सो जाते हो बिना बेड, है ना, लेकिन गृहस्थ तो नहीं सोता है, नहीं हो पाता, भी करता. अब उसमें भी अलग अलग है ना, उसमें भी है ना कितना, हाँ एक बेड ही आएगा आपका, हो सकता है 2 लाख का बेड आ सकता है, डिपेंड करता है आपको. जैसे गाड़ी है, आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी है 50 लाख तक गाड़ी भी आता है, तो आपको कौन सा गाड़ी चाहिए, है ना. तो कोई डिवोटी को बोल दे कि नहीं मेरे को 4 लाख की गाड़ी से चल जाएगा, 2 लाख की स्कूटर से भी चल जाएगा, मतलब 50,000 की बाइक से भी मेरा चल जाएगा. तो डिपेंड करता है, हमारा नीड्स हम डिफाइन करें हमारे एबिलिटी के हिसाब से है और उसको हम कोशिश कर, उतने में हम संतुष्ट रहे. संतुष्ट रहना एक बात है, ये ना देखे कि अरे वो डिवोटी तो इतना कर लिया मेरे को भी उतना ही करना है, ठीक है उनके लिए है, हो सकता है कृष्ण ने दिया मेरे लिए इतना है, ठीक है संतुष्ट रहना. और अपने जो है उसके बाद भी हो सकता है आपने जो मिनिमम भी रखा वो भी नहीं हो रहा है,
तो नहीं हो रहे तो क्या कर सकते, सरेंडर टू कृष्ण, कृष्ण इतना प्रयास कर रहे हैं उसके बाद ठीक है जैसे रखोगे ऐसे ही रखेंगे, जैसे खिलाओगे ऐसे खिलाओगे। लेकिन हम भक्ति तो छोड़ नहीं सकते। तो जैसे आप बता रहे हो कि इतना 16 घंटा का 17 घंटा का, अगर जॉब आपका इतना डिमांडिंग है उसके बाद भी कुछ टाइम तो मिल जाता है सोने के लिए, तो प्रभुपाद कहते रिड्यूस योर ईटिंग, रिड्यूस योर स्लीपिंग, रिड्यूस योर एंटरटेनमेंट एंड डू। तो जितना टाइम मिल जाएगा उसमें से एटलीस्ट बेसिक जो है 16 राउंड चैंटिंग और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और छोटा मोटा सर्विस, इतना तो हम मेंटेन कर ही सकते। और ये तो कितना भी कैसे भी जॉब हो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। ठीक है, और क्या आपको मेरे ख्याल से टाइम हो गया है।
सराउंडिंग्स में बहुत फेस कर रहा हूँ, एक्यूमुलेशन इसलिए हो रहा है आज जो डिवोटी के नाम मेरी चर्चा हो रही है, तो एक्यूमुलेशन इसलिए कि एक इनसिक्योरिटी है,
इनसिक्योरिटी
मैं इतना कमाना चाहता हूँ 50 GA से पहले पहले कि मेरे पास 50 के बाद जॉब है तो मैं सिर्फ बैठ नहीं सकता, प्लॉट देना है, प्रॉपर्टीज लेनी है, बस एक्यूमुलेशन उनके साथ रहते हैं ना, तो वो भी मतलब दिमाग में वो चीज घूमती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, मन करता है मैं चला जाता हूँ कहीं बाहर और एक्यूमुलेट कर लेता हूँ 5-6 महीने। तो ये सही है या गलत है?
वही है, ये भी आपको जैसे बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लगता है कि एक्यूमुलेशन करना है क्विकली करना है मुझे, है ना, और तो अगर ऑनेस्टली करते हैं तो कर भी सकते हैं, जैसे डिपेंड करता है क्या हमारा पर्पस है और क्या कॉन्शियसनेस है। तो लेकिन साथ में जैसे हमें भक्ति को बिल्कुल जीरो नहीं करना है कि जीरो करके हम नहीं जा सकते, और फिर तो वही कंसर्न आता है कि जैसे हमने बताया कि मैरिज से पहले सोच रहे थे वो प्रिय व्रत महाराज कि उससे मेरा भक्ति तो नष्ट नहीं हो जाएगा, उसी तरह अगर मैं जाऊंगा उधार तो उससे मेरा भक्ति नष्ट तो नहीं हो जाएगा, तो एट इसकी कॉस्ट पे तो नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ये एक चीज है। उसके बाद फिर हमें देखना है कि ठीक है, मतलब है ना, अगर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है उससे मैं कर सकता हूँ तो कर। और एक डिवोटी ये भी जानता है कि लाइफ इज फुल्ली अनसर्टेन, कि 50 साल तक भी कैसे जीवन रहेगा वो भी कुछ बारे समझ। तो लाइफ जो है वो उस दिन जो विश्वनाथ प्रभु बता रहे थे एक स्टेटमेंट कि एक डिवोटी शुड प्लान इन टू वेज कंसिडरिंग टू थिंग्स कि है 60 मिनट्स है ना, कि इफ ही लिव्स ओनली 60 मिनट्स मोर देन व्हाट विल हैपन, एंड इफ ही लिव्स 60 इयर्स मोर व्हाट विल हैपन। सो ही शुड प्रिपेयर फॉर बोथ द सिचुएशन। वैसे ना हो कि सिर्फ हम 50 साल के बाद वाला ही सोच रहे हैं, है ना, और अभी वाला बिल्कुल सोच रहे हैं कि अभी मेरा भक्ति का क्या लेवल है। ठीक है, तो वो भी रखना चाहिए। और लाइफ उसके बाद भी एक डिवोटी जानता है कि सब कुछ होने का बाद भी कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट रहना जरूरी है। लक्ष्मी होगा भी, ऑफ कोर्स लक्ष्मी इज रिक्वायर्ड, वी शुड हैव प्रैक्टिकली, वी शुड हैव सेविंग्स, वी शुड हैव ऑल, बट ही नोज दैट ऑल दिस सेविंग्स इटसेल्फ इज नॉट इनफ, आई नीड कृष्णस प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। और अगर सेविंग थोड़ा कम भी है तो भी आई नीड कृष्णस प्रोटेक्शन, अगर सेविंग मेरा ज्यादा है तो भी आई नीड कृष्णस। So as long as this consciousness is there, it's fine. ठीक है, लेकिन saving as a practical point of view should have, और अपने level के अनुसार हम छोटा घर कर सकते, किसी का इतना बड़ा घर है मेरा छोटा, it's fine, है ना। ठीक है, okay. ठीक है, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।